अयोध्यावासी राम 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 दशरथ नंदन राम अयोध्यावासी राम 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 दशरथ नंदन राम पतित पावन जानकी जीवन सीता मोहन राम अयोध्यावासी राम 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 दशरथ नंदन राम पतित पावन जानकी जीवन सीता मोहन राम अयोध्यावासी राम 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 दशरथ नंदन राम पतित पावन जानकी जीवन सीता मोहन राम अयोध्यावासी राम 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 दशरथ नंदन राम पतित पावन जानकी जीवन सीता मोहन राम
उमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीव साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नम ओं विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे बृंदावनेश्वरी వృషభానుస్తుతే దేవీ ప్రణమామి హరిప్రియే వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపాసింధుభ్యః ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధార శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ తో ఆజ్ రామనవమి కే ఉత్సవ పర్ ఆప్ సబ్కా స్వాగత హై తో ఆజ్ హమ్ ఇస్ విషయ పే చర్చా కర్నా చాతే హై రామాయణ మే శరణాగతి తో రామాయణ మే కమ్ సే కమ్ 12 ఐసే జగహ హై 12 ఎపిసోడ్ జహాన్ పర్ కోయి కిసీ కో శరణ మే జాతా హై తో యే శరణాగతి కే పీచే కా రహస్య ये शरणागति होता क्या है और ये करने से और भगवान का दृढ़ व्रत क्या है इसके बारे में तो आज हम इस पर्टिकुलर टॉपिक पर चर्चा करेंगे. तो ये श्लोक है जिसके ऊपर हमारा आज का प्रवचन रहेगा. तो युद्ध कांड में ये श्लोक भगवान श्री राम खुद कहते हैं. तो मेरे पीछे दोहरा सकते हो आप. సకృదేవ ప్రపన్నోయం తవాస్మి ఇతి యాచతే అభయం సర్వభూతేభ్యో దదామి ఏతద్ వ్రతం మమ. సకృదేవ ప్రపన్నాయ తవాస్మి ఇతి యాచతే అభయం సర్వభూతేభ్యో దదామి ఏతద్ వ్రతం మమ. సకృదేవ ప్రపన్నాయం తవ అస్మి ఇతి యాచతే అభయం సర్వభూతేభ్యో దదామి ఏతద్ వ్రతం మమ. కోయి దోరానా చాయేగా దో తీన్ ప్రభుజీ. తో యే జో శ్లోక్ హై భగవాన్ శ్రీ రామచంద్ర युद्ध कांड में कहते हैं जब विभीषण की विभीषण शरणागत करते हैं, विभीषण जब शरणागति के लिए आते हैं उस समय पर भगवान ये श्लोक कह रहे हैं. और इसका अर्थ ये है कि सकृदेव प्रपन्नाय एक बार भी तव अस्मि इति याचते, एक बार भी अगर किसी व्यक्ति मेरे पास आए और उसने कहा मैं आपका हूं, अभयम सर्वभूतेभ्यो मैं उसको अभय प्रदान करता हूं, ददामि एतद् व्रतम मम और ये मेरा व्रत है, तो मैंने ऐसा एक व्रत लिया है कि अगर कोई भी व्यक्ति केवल एक बार मेरे पास आकर कहे कि मैं आपका हूं, एक ही बार कहे तो मैं उसको सदा सदा के लिए अभय दान देता हूं. तो इस प्रकार का व्रत मैंने लिया हुआ है. ये एक्चुअली रामायण का चरम श्लोक कहा गया है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्सेस ऑफ द रामायण. तो हम इस पर्टिकुलर श्लोक के ऊपर आज चर्चा करने वाले हैं. तो रामायण में जो पहले जो श्लोक है उसमें नारद और वाल्मीकि का संवाद है. और उस समय वाल्मीकि जी नारद मुनि से एक प्रश्न कर रहे हैं, एक 16 गुण का वो उल्लेख कर रहे हैं और वो पूछ रहे हैं कि ये 16 गुण जो है वो किस व्यक्ति में पाया जाता है. तो इसके बारे में हमने पहले चर्चा किया है. हम अभी तक छठे गुण तक आए थे. दो तीन बार संडे को हमने जब क्लास दिया था तब इसी मुद्दे पर चर्चा किया था. और आज का पूरा जो शरणागति का थीम है ये जो छठा गुण है दृढ़ व्रत, इसका एलोबरेशन है, इसके ऊपर वृत्तांत है एक्चुअली. तो ये जो श्लोक है ये एक्चुअली पहले तीन श्लोक है रामायण के. तो मैं पढ़ रहा हूं ये. कौन वस्मिन सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः चारित्रेण च को युक्त सर्वभूतेषु को हितः विद्वान कह का समर्थश्च कश्चैक प्रिय दर्शन आत्मवान को चित क्रोधो द्युतिमान को न सूयक कस्य बिभ्यति देवाश्च जात रोषस्य संयुगे. तो वाल्मीकि जी नारद मुनि से प्रश्न कर रहे हैं बालकांड के ओपनिंग सेक्शन में और वो पूछ रहे कि कौन है वो व्यक्ति, कौन वस्मिन सांप्रदम लोके, कौन है अभी इस जगत में इस समय. क्योंकि वाल्मीकि जी रामायण का रचना तभी करते हैं जब भगवान इस जगत में है, मतलब जब भगवान का अवतार हुआ है उस समय कंटेम्प्रेरी है वो भगवान के, तो उस समय लिखते हो। तो इसलिए वो प्रश्न कर रहे हैं अभी कौन है जगत में व्यक्ति जिसके पास ये 16 गुण है, और 16 गुणों के बारे में उन्होंने यहां पर चर्चा किया है। कौन से गुण? गुणवान, वीर्यवान, धर्मज्ञ, कृतज्ञ, सत्यवाक्य, दृढ़व्रत, चारित्रेण, सर्वभूतेषु कोहित, विद्वान, समर्थ, कश्चेक प्रिय दर्शन, आत्मवान, जितक्रोधो, द्युतिमान, अनुसूयक, कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुग, ऐसे 16 आइटम बताया उन्होंने। तो आज का जो विषय है ये जो छठा गुण है दृढ़व्रत, इसके बारे में हम आज कुछ बोलने का प्रयास करेंगे। दृढ़व्रत ये छठा है एक्चुअली, द सिक्स्थ इन द सीरीज ऑफ 16। तो दृढ़व्रत जो है ये भगवान खुद यहां पर कहते हैं, दृढ़व्रत मतलब व्हाट? डिटर्मिनेशन, मतलब किसी ने व्रत लिया है, नहीं मैं करूंगा ये। और भगवान के व्रत ऐसे है कि एक बार उन्होंने लिया तो कभी पीछे ही नहीं हटते, स्पेशली भगवान श्री रामचंद्र का वो कैरेक्टरिस्टिक है। कोई भी व्रत ऐसा उन्होंने नहीं लिया कि जो पीछे हट गए, ऐसा होता ही नहीं है, रामलीला में ऐसा आप नहीं देख सकते। तो ये जो श्लोक हमने युद्ध कांड में पढ़ा था, सकृदेव प्रपन्नाय तव अस्मि इति याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो दतामि एतद् व्रतम मम, ये व्रत लिया है भगवान ने, जैसे हमने पहले पढ़ा था, जो भी मेरे पास आके शरण करेगा और कहेगा मैं आपका हूं, मैं उसको सदा सदा के लिए अभयदान प्रदान कर देता हूं। तो ये दृढ़ व्रत है भगवान का, और भगवान इससे कभी पीछे नहीं हटते, कभी पीछे नहीं हटते। इनफैक्ट ये जब श्लोक, तो हम जानते हैं युद्ध कांड में जब विभीषण शरणागति के लिए आते हैं तो सुग्रीव और सब जो बंदर है उनके बीच में एक चर्चा चलता है वहां पर कि ये विभीषण को लेना चाहिए या नहीं, तो बहुत कुछ संवाद होता है, उसके बारे में हम थोड़े बाद में बात करेंगे। लेकिन अंत में भगवान अपना निर्णय सुनाते हैं और तभी भगवान ये श्लोक कहते हैं। और इसका जो अगला श्लोक है वो भी बहुत सुंदर है, उसमें भगवान कहते हैं सुग्रीव को, तुम जाओ जल्दी अभी, और वहां अगर रावण भी आ गया, वहां अगर रावण, अगर तुमको लगा कि नहीं हमने मिस आइडेंटिफिकेशन किया, हमको लगा वो विभीषण है लेकिन एक्चुअली रावण है, तो वापस यहां आके चर्चा करने का जरूरत नहीं है। यदि वह रावण, रावण स्वयं, अगर रावण भी है उधर, तुरंत लेके आ जाओ उसको, क्योंकि भगवान का दृढ़ व्रत है। तो उनका दृढ़ व्रत ये है कि जो भी उनके प्रति शरणागत हो जाएगा उनको तुरंत तो अभय प्रदान करेंगे। तो ये शरणागति होता क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। तो एक्चुअली अंग्रेजी में इसके लिए उचित शब्द मिलना थोड़ा कठिन है, अंग्रेजी में हम जनरली सरेंडर कहते हैं उसको, लेकिन सरेंडर ये जो शब्द है अंग्रेजी में, इसमें वो मिठास नहीं है जो शरणागति में है। सरेंडर सुन के ऐसा लगता है जैसे कोई चोर, पुलिस एक चोर के पीछे भागता है बंदूक लेके, और चोर एकदम ही रीचेस ए डेड एंड और कहीं जाने को रास्ता नहीं है, तो हाथ ऊपर करके आई सरेंडर कहते हैं, तो वो एक्चुअली शरणागति नहीं है, वो थोड़ा सा अलग है। तो ये जो शब्द है इसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। तो शरणागति जो है, जैसे फॉर एग्जाम्पल चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को जब उनकी शिक्षा करते हैं तो दीक्षा के बारे में बोलते हैं, तो शरणागति का दूसरा एक सिनोनिम है आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण, तो वहां पर महाप्रभु सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण करे तारे आत्मसम। दीक्षा मतलब क्या? भगवान महाप्रभु कहते हैं कि दीक्षा मतलब जब भक्त आत्मसमर्पण करता है, जब शरणागत होता है भगवान के प्रति, और उस समय भगवान क्या करते हैं, सही काले कृष्ण करे तारे आत्मसम, ये मेरे से भिन्न नहीं है, इस प्रकार से भगवान देखते हैं उस व्यक्ति को। दैट मीन्स कृष्णा सीज दैट पर्सन एज नॉन डिफरेंट फ्रॉम हिम। सही काले कृष्ण करे तारे आत्मसम, आत्मसम उनके जैसे ही इस शरणागत व्यक्ति को देखते हैं। तो ये एक्चुअली एक डेफिनेशन है शरणागति का। और शरणागति के बारे में हम गीता में भी देखते हैं, जो चरम श्लोक है गीता का, जो सबसे मुख्य श्लोक है जो सभी लोग जानते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। आप सब प्रकार के धर्म को त्याग करके मेरे पास शरण करो और मैं वापस वही कर रहे हैं, यहां पर अभय प्रदान ही दे रहे हैं। इट इज एन अभय प्रदान श्लोक। अभय प्रदान मतलब मैं आपको सभी पापों से, सभी समस्याओं से दूर कर दूंगा, और डरो मत, वापस आश्वासन दे रहे भगवान कृष्ण। तो ये चीज हम यहां पर देखते हैं एक्चुअली। तो शरणागति के ऊपर सनातन गोस्वामी ने हरिभक्ति विलास में बहुत सुंदर श्लोक रचा हुआ है, जो श्रील प्रभुपाद जी उनके तात्पर्य गीता के 18.66 में भी करते हैं, अनुकूल्यस्य संकल्प प्रतिकूल्यस्य वर्जनम रक्षसीति विश्वातो गोपतृप्ते वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागति ही। शरणागति मतलब क्या, ये छह प्रकार के कार्य उसमें रहते हैं। और हम विभीषण का एक उदाहरण देख के हमको बहुत अच्छी तरह से पता चलता है कि किस प्रकार विभीषण ने शरणागत हुए हो भगवान के प्रति। पहला क्या है, अनुकूल्यस्य संकल्प, मतलब जो भी अनुकूल हो उसको आप स्वीकार करो। तो हम देखते हैं शरणागति के लिए आने के पहले, विभीषण जब राम के पास आए शरणागत होने के लिए, इसके पहले विभीषण जो थे वो राम के अनुकूल कार्य कर रहे थे। कैसे कर रहे थे, लंका में बैठ के वो रावण को उपदेश दे रहे थे कि आप इस प्रकार से आपने सीता का अपहरण किया, ये गलत है, आपको वापस जाके देना चाहिए सीता को रामचंद्र जी के पास। तो इस प्रकार से अनुकूल्य से संकल्प, जो क्योंकि विभीषण राम के प्रति शरणागत थे, जो भी उस शरणागति के लिए अनुकूलता वो कार्य वो पहले से कर रहे हैं अनुकूल्य से संकल्प। और प्रतिकूल्य से विवर्जन, जब उन्होंने देख लिया, प्रतिकूल मतलब जो शरणागति के अनुकूल नहीं है, जो प्रतिकूल है उसको त्याग कर दो, आप उसको छोड़ दो। तो हम देखते हैं कि विभीषण, उन्होंने बहुत प्रयत्न किया रावण को समझाने का सब कुछ। जब उन्होंने देखा कि ये सुधरने नहीं वाला है, तो हालांकि वो उनके भाई है, लेकिन तब भी विभीषण ने उनका प्रतिकूल, उनको त्याग कर दिया, सबको छोड़ के आ गए भगवान के पास। प्रतिकूल से वर्चनम। तीसरा शरणागति का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, रक्षसीति विश्वासो, भगवान मेरा रक्षा अवश्य करेंगे, अवश्य करेंगे। जिस प्रकार प्रहलाद महाराज थे, प्रहलाद को हिरण्यकश्यपु अग्नि में डाल रहे थे, हाथी के साथ उनका कुचल करने का प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन तब भी उन्होंने इवन भगवान को बुलाया भी नहीं, इतना उनको रक्षसीति विश्वास हो, इतना कॉन्फिडेंस था कि नहीं भगवान मेरा रक्षा करेंगे। तो विभीषण भी सब कुछ छोड़ के आ गए यहाँ पर, जैसे भक्तिविनोद ठाकुर गाते हैं, मानस देह गेहो जो किच मोर आर पी लो तुआ पते नंद किशोर। तो एक्चुअली अगर आप देखोगे दुनिया में भी, अगर कोई व्यक्ति एक जॉब एक नौकरी है उसका, दूसरा नौकरी ढूंढ रहा है, दूसरा नौकरी मिलने के बाद पहला नौकरी छोड़ते हैं ना, मतलब वही हम लोग सब करते हैं, पहला हमको नौकरी मिलना चाहिए दूसरा, फिर उसके बाद उनको बोल के रखते हैं, हम देखो मेरे को 3 महीना लगेगा, मेरा नोटिस पीरियड है, चलेगा ना तुमको, तो अगर नया एम्प्लॉयर ने कहा हाँ हाँ ठीक है मैं रुकता हूँ 3 महीने, तब यहाँ जाके कोई व्यक्ति रेजिग्नेशन देता है, वो कहते हैं कि नहीं बाबा 3 महीने का नोटिस पीरियड है अभी, क्यों, क्योंकि डर लगता है। लेकिन यहाँ पर विभीषण ऐसा कुछ नहीं कि उन्होंने व्हाट्सएप किया भगवान रामचंद्र को पूछ लिया कि मैं आ रहा हूँ लोगे ना मेरे को अंदर, ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ ऐसे ही त्याग करके आ गए। क्यों, रक्षसीति विश्वासो, उनको विश्वास था ये मेरा रक्षण करेंगे। तो रक्षसीति विश्वासो गोपतृप्त्वे वर्णम तथा, गोपतृप्त्वे वर्णम तथा का काफी अर्थ बताया गया है, लेकिन एक अर्थ उसमें बहुत सुंदर है जो मैंने सुना, गोपतृप्ते वर्णम तथा, वर्णम तथा मतलब आपको आपके मुख खोलकर भगवान से शरणागति का याचना करना चाहते हैं, ओपन योर माउथ एंड सीक प्रोटेक्शन, ऐसा नहीं कि सिर्फ मन में, खोल के वर्ण, वर्ण मतलब आप उच्चारण करो, आप भगवान से जोर से, जिस प्रकार द्रौपदी ने, जब एक्चुअली रामायण और महाभारत का अगर हम सेंटर स्टोरी देखेंगे, दोनों शरणागति की स्टोरी है। आप अब कोई भी महाभारत का अगर आप पुस्तक लोगे, जो फ्रंट कवर रहता है वो द्रौपदी वस्त्रहरण और द्रौपदी याचना कर रही है भगवान कृष्ण से, उसी का पेंटिंग रहेगा कहीं पर भी, क्योंकि वही सेंटर थीम है महाभारत का। जिस प्रकार से यहाँ पर विभीषण शरणागति को बहुत ही महत्व दिया गया है, उस प्रकार महाभारत में द्रौपदी की शरणागति, और उसमें वो क्या करती है, गोपतृप्ते वर्णम तथा, वो जोर से चिल्लाती है, हे कृष्णा हे द्वारकावासिन मेरा रक्षा कीजिए प्लीज, इस प्रकार से वो भगवान से याचना करती है। तो इसी प्रकार विभीषण भी जब आए यहां पर, तो उन्होंने ऐसा इस प्रकार से याचना किया, निवेदयत माम क्षिप्रम राघवाय महात्मने सर्वलोक शरण्याय विभीषणम उपस्थितम। जब विभीषण आते उनके 4 साथियों के साथ, सब कुछ त्याग करके जब आ जाते, या जब जहां राम और सब बंदर सेना है, वहां पर सुग्रीव से ये श्लोक कहते हो, सर्वलोक शरण्याय, आप कृपा करके जाके कहिए, जो सर्वलोक शरण्याय, जो सब लोगों को शरण देते हैं भगवान श्री रामचंद्र, उनसे जाके कहिए कि विभीषण आए उनका शरण मांगने के लिए। गोपतृप्ते वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य, कार्पण्य मतलब ह्यूमिलिटी, एक दीन भावना कि यू नो मैं कुछ भी लायक नहीं हूं, सिर्फ अगर मेरा भगवान मुझे शरण देंगे तभी मेरा कुछ होने वाला है, ये कार्पण्यता। और आत्मनिक्षेप, कृष्ण ही मेरे जीवन के पूरे आधार है, मतलब भगवान हमारे जीवन के आधार है, ये इसका एक मन में एक इस प्रकार से एक भाव रखना, आत्मनिक्षेप। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी ये श्लोक जो सनातन गोस्वामी हरिभक्ति विलास में उन्होंने रचना किया है, इसका अपने 18.66 के परपोर्ट में लिखते हैं। तो बेसिकली हम देखते हैं कि विभीषण जो थे, जब शरणागत होने के लिए आए भगवान रामचंद्र के पास, उन्होंने 6 के 6 कैरेक्टरिस्टिक प्रदर्शन किया था। तभी हम इस कहानी में वापस आएंगे एक बार, लेकिन अभी हम क्या करना चाहते हैं कि आज रामायण के तिथि के अवसर पर हम देखना चाहते हैं कि रामायण में बहुत सारे उदाहरण है इस प्रकार से, जब किसी व्यक्ति ने शरण लिया। तो हमने आज ऐसे 12 उदाहरण हमने यहाँ पर उसका लिस्ट बनाया है और इसके बारे में आज चर्चा करने का प्रयत्न करेंगे। इस प्रकार से हमें जरा पूरा रामायण का थोड़ा आस्वादन करने का भी अवसर मिलेगा और हम ये भी देख पाएंगे कि किस प्रकार हर एक लीला में सेम थीम चल रहा है, मतलब यही चीज वापस वापस हो रहा है कि कोई व्यक्ति जाके शरण ले रहा है। तो किस प्रकार से शरण हो रहा है हम देखेंगे। तो जो पहला शरण है वो है देव शरणागति, तो ये बालकांड। तो हम सब जानते हैं, जिन्होंने रामायण कभी पढ़ा है हम जानते होंगे कि रामायण में 7 कांड है, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। इस प्रकार के 7 कांड, 7 भाग है रामायण में वाल्मीकि के, और ये 7 भागों में आपको शरणागति दिखाई देगा। इसीलिए पूरा ग्रंथ का नाम भी कभी कभी शरणागत ग्रंथ कहा गया है रामायण को। तो पहला शरणागति हम देखेंगे, ये राम जन्म के पहले, राम जन्म के पूर्व। तो जब दशरथ महाराज ऋष्यशृंग और वशिष्ठ के पास जाते हैं और याचना करते हैं कि मुझे पुत्र प्राप्ति होना, मुझे पुत्र की याचना है, तो आप कृपा करके कोई यज्ञ कीजिए। तो ऋष्यशृंग उस समय पुत्र कामेष्टि यज्ञ करते हैं और वो पुत्र कामेष्टि यज्ञ जब कर रहे हैं ऋष्यशृंग, उस समय वो अलग अलग देवताओं का नाम लेके उनके लिए आहुति देते हैं। तो उस समय एक एक करके एक एक देवता आते हैं वो आहुति स्वीकार करने के लिए। अग्नि स्वाहा तो अग्नि आ जाते, इंद्रा स्वाहा इंद्रा आते, सब आते अपना अपना ऑफरिंग स्वीकार करने के लिए। ये चल रहा है। तो उस समय क्या होता है कि सभी देवता आ गए, सभी देवता आ गए, उन्होंने अपना अपना ऑफरिंग तो स्वीकार किया, फिर वो आपस में बात करने लगे। तो कैसा होता है ना, जनरली कभी भी सोशल फंक्शन में आप जाओगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी का विवाह है, तो वहां जाओगे तो अगर एक ही बिल्डिंग एक ही सोसाइटी से 10 लोग आए और समझो वो 10 लोगों को एक समस्या है, समझो उनके घर में पानी नहीं आता उनके सोसाइटी में, तो विवाह में तो आ जाते लेकिन आपस में यही डिस्कशन चलता रहता है विवाह में, क्योंकि उनको विवाह से ठीक है भाई उसका विवाह चल रहा है, लेकिन हमको तो पानी का प्रॉब्लम है अभी, तो डिस्कस कर देते हैं कॉर्पोरेशन से पानी कम है, टैंकर मंगवाना पड़ेगा, ये सब एक इष्टा गोष्ठी चलता रहता है। उसी प्रकार से यहां हम देखते हैं सब देवी देव देव सब देवता आ गए ऋष्यशृंग की आहुति जो भी स्वीकार करने के, लेकिन उनके बीच में डिस्कशन शुरू हो गया, चर्चा शुरू हो गया। क्या चर्चा? कि रावण इतना हमको सबको त्रस्त करके रखा है, इससे छुटकारा कैसे होगा? उनका प्रॉब्लम था, उनका पानी का प्रॉब्लम जो भी इक्विवेलेंट। तो सब आपस में उनका चर्चा चल रहा था कि रावण हमको बहुत तकलीफ दे रहा है, कैसे होगा, इस प्रकार से इतने सारे वर दे दिए ब्रह्मा जी ने। फिर ब्रह्मा जी आ जाते हैं वहां पर, ब्रह्मा जी आते वो कहते हैं कि देखो ऐसा वर है हमने दिया है रावण को, सिर्फ मनुष्य मार सकता है। तो ये सब चर्चा कर रहे थे, कौन मनुष्य है जो मारे गए रावण को, हमसे नहीं हो पा रहा तो कैसे मनुष्य मार सकता है। तो ये सब जब चर्चा चल रहा है उस समय भगवान विष्णु आ जाते हैं और इतनी सुंदर से वाल्मीकि जी वर्णन कर रहे हैं कि जो यज्ञ करने वाले है ना ऋष्यशृंग और दशरथ, वो ये डिस्कशन नहीं देखते। जिस प्रकार से कोई विवाह चल रहा है, जो विवाह के मेन व्यक्ति है, जो लड़का लड़की उनके माता पिता, वो एकदम व्यस्त है उनके विवाह के संस्कार में, जो बाकी अतिथि आए वो उनके बीच में चल रहा है सब डिस्कशन। तो इस प्रकार से सब देवी देवता जब सब देवता देवी नहीं थे वहां पर सब देवता जब उनका चर्चा चल रहा था कि रावण से हम त्रस्त है क्या किया जाए, तो ब्रह्मा जी भी सोच रहे कि नहीं विष्णु ही कुछ कर सकते, तो भगवान विष्णु आ जाते हैं वहां पर। और किस प्रकार से विष्णु आते हैं वहां पर वो वर्णन है, श्लोक है, एतस्मिन् अंतरे विष्णु रूपयतो महाद्युति शंख चक्र गदा पाणि पीतवासा जगतपति। ये बालकांड 15वें अध्याय का 16 श्लोक है जो मैंने वहां लिखा है 1:15:60। तो भगवान एकदम सुंदर सज धज के आ गए, सज धज के आ गए, महाद्युति तेजस था उनके शरीर में, शंख चक्र गदा पाणि सब आयुध लेके आए, पीतवासा मतलब पीत वस्त्र पहने हुए थे, सब एकदम आयरन करके चकाचक था, यू नो, भगवान जब आए थे देवी सब देवताओं के बीच में एकदम वेल ड्रेस्ड थे। तो जो श्री वैष्णव टीकाकार है, जो व्याख्या था कमेंटेटर, वो कहते हैं कि देखो भगवान बेसिकली रुके हुए है कि कौन मेरा शरण आए। जनरली कैसा होता है ना, कोई व्यक्ति है, अगर कोई डॉक्टर है फॉर एग्जाम्पल, और उसके पास पेशेंट्स की कमी है, पेशेंट आते ही नहीं उसके पास, थोड़ा मायूस रहता है वो। फिर सडनली एक दिन जब वो देखता है कि उसके डिस्पेंसरी के बाहर एक 10-15 पेशेंट है, बहुत खुश हो जाता है वो। मतलब उसको सेवा करने का मौका मिले ना, तो एकदम बराबर ड्रेस करके, आयन करके, स्टेथोस्कोप डाल के, सब एकदम फॉर्मल आ जाता है वहां पर। तो उसी प्रकार से वो कहते हैं कि भगवान जो है वो शरणागति देने के लिए तैयार है, वो रुके हुए, कौन मेरा शरण आ रहा है। लेकिन कोई जनरली भौतिक जगत में कोई जाता नहीं उनके पास ज्यादा, तो उनको पता चल गया अभी सब देवी देवता सब यू नो तकलीफ में है, अभी वो मेरे पास आने वाले है। तो भगवान बहुत प्रसन्न थे कि अभी मुझे शरणागति स्वीकार करने का एक बहुत अच्छा अवसर मिलेगा, तो बहुत सच दच के आए थे वहां पर। ये यज्ञ चल रहा है यहाँ पर, प्लीज रिमेम्बर। तो ऋषि श्रृंग को वो सब वो मंत्र बोल रहे, आहुति दे रहे, वो सब उनका चल रहा है, यहाँ पर ये मीटिंग चल रहा है। तो भगवान विष्णु आ गए और ऋषि श्रृंग और दशरथ ये देख नहीं पाते कन्वर्सेशन। तो वहां पर विष्णु आते हैं और कहते हैं कि हाँ अभी अभी तो सब देवी देवता शरण में जाते हैं भगवान के। तो श्लोक है वाल्मीकि रामायण में, बालकंड में, सब पैर पड़ते हैं उनके, पूरी तरह से शरणागत होते हैं, बहुत सुंदर प्रार्थना करते हैं सब देवता ब्रह्मा जी के साथ, और कहते हैं कि देखिए आप ही कुछ कर सकते हो, हमारे इस हमारा जो ये कठिन परिस्थिति है इसमें से आप ही हमको छुड़वा सकते हो। तो उस समय भगवान कहते हैं हाँ, फिर भगवान कहते हैं कि मैं इस प्रकार से ये दशरथ जो यहाँ यज्ञ कर रहा है पुत्र के लिए, उसका ही पुत्र कहकर मैं जन्म ले लूंगा, और इस प्रकार से अवतार लेके मैं आपका जो इच्छा है पूर्ण कर दूंगा, इस प्रकार से अभयदान देते हैं। तो बेसिकली शरणागति का यही कैरेक्टरिस्टिक है, कोई व्यक्ति है जिसको समझ में आ गया कि वो खुद नहीं कर सकता, तो भगवान के पैर पड़ जाता है, कहता है कि भगवान आप ही कुछ करो मेरे लिए, और भगवान अभय प्रदान देते हैं। भगवान कहते हैं कि ठीक है, तो आई विल कंप्लीट प्रोटेक्ट यू, मां सुचा डरो मत, मैं हूं ब्यूनो को व्हाटएवर। तो भगवान इस प्रकार से उन्होंने आश्वासन दिया। फिर आश्वासन देने के बाद क्या हो गया, सडनली यहां पर यज्ञ में भगवान के अरेंजमेंट से एक महापुरुष निकल गया यज्ञ से, और जैसे शायद आपने जो भी गीत रामायण सुना होगा, दशरथा गे हे पायस दान, हे दशरथा ये पायस स्वीकार करो और तीनों रानियों को दे दो। इस प्रकार से वहां पर व्यक्ति ने ऋषि श्रृंग का जो यज्ञ है पुत्र कामेष्टि वो भी सफल हो गया। तो ये पहला उदाहरण है शरणागति का। ये किसकी शरणागति है, देवों की शरणागति है नारायण के प्रति, देव शरणागत हुए भगवान नारायण के प्रति, और देव शरणागत हुए इसलिए भगवान ने अवतरण लिया। जैसे हम गीता में सुनते हैं, परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो ये पहला शरणागति है बालकांड में। जो दूसरा शरणागति है वो है त्रिशंकु की शरणागति। अभी यहां पर एक बहुत मुख्य बात है जो हम कहना चाहते हैं कि जो 12 शरणागतियों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, उसमें दूसरा और तीसरा नंबर का शरणागति भगवान के प्रति नहीं है, एक ऋषि के प्रति है, विश्वामित्र के शरण जाते हैं वो लोग। तो हम बोल सकते हैं ऐसा कैसा हो सकता है, व्यक्ति भी शरण दे सकता है क्या? तो उसका उत्तर है हाँ। अगर आप भगवान के 64 गुणों का वर्णन देखोगे तो 37वां गुण जो है वो ये कि शरणागत व्यक्तियों की रक्षा करना, प्रोटेक्टिंग द सरेंडर्ड सोल्स, ये 37वां गुण है 64 गुणों में भगवान के। और हम सब जानते हैं कि भगवान के 64 गुण के जो पहले 50 है वो जीव में भी पाया जाता है, छोटी मात्रा में जीव में भी रहता है, ब्रह्मा तक सभी जीवों में 50 गुण रहते हैं छोटी मात्रा में। तो शरणागति देना ये भी एक विज्ञान है। तो हम देखते हैं स्पेशली महाभारत में जो अंतिम कथा है बहुत सुंदर है, जब युधिष्ठिर स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर रहे हैं तो उस समय कुत्ता उनके साथ चलता है। तो बेसिकली सब पांडव और द्रौपदी चलने लगते हैं स्वर्ग की तरफ, तो उस समय कुत्ता भी उनके साथ चलने लगता है और सब द्रौपदी और बाकी पांडव सब गिरने लगते हैं। लेकिन वो कुत्ता जो है महाराज युधिष्ठिर के साथ काफी देर जाता है और वहां तक जाता है जहां पर इंद्रदेव आ जाते हैं रथ के साथ युधिष्ठिर महाराज का स्वागत सत्कार करने के लिए, उनको स्वर्ग ले जाने के लिए। तो युधिष्ठिर कहते हैं इंद्र को, ये जो कुत्ता है मेरे साथ आपको इसको भी मिलना पड़ेगा। तो इंद्र कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो कुत्ता है, कुत्ते को हम यू नो मतलब शायद कलयुग में कुत्ते का प्रोमिनेंस है बहुत, लेकिन स्वर्ग में हम ऐसे धरती के कुत्तों को एंट्री नहीं है, नहीं चलेगा। तो युधिष्ठिर कहते हैं मेरे मुझे नहीं आना, क्योंकि ये इसने मेरा शरण लिया, मेरे साथ चला इतनी देर तक, तो इसके बिना मैं नहीं आऊंगा। तो ये सब काफी चर्चा होता है। फिर फाइनली वो कुत्ता जो है एक्चुअली यमराज है, वो प्रतीत होते और वो कहते हैं कि हम आपका परीक्षा ले रहे थे क्योंकि धर्म में स्थित हो क्या, क्योंकि धर्म का एक पार्ट ये है जो 37वां गुण है 64 गुणों में, कि अगर किसी व्यक्ति आपके पास आए शरण लेने के लिए, आपके शक्ति आपके सक्षमता के जो भी है उतना आपको उसका शरण देना पड़ेगा, आप नहीं कह सकते, उसको टुकरा नहीं सकते। ये एक एक्चुअली एक इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, इसीलिए युधिष्ठिर महाराज का वहां पर परीक्षा होता है। तो हम देखते हैं एक्चुअली इस जगत में भी कोई भी व्यक्ति हो जो गुरु है, या अगर कोई जैसे हमारे संस्था में काउंसलर है, ये है वो है, कोई पोजीशन है, लीडर है, तो वो भी किसी ना किसी तरह से दूसरों को शरण ही दे रहा है, और उसको भी ये शरणागति का जो विज्ञान है उसके बारे में जानना पड़ेगा, और वो टुकड़ा नहीं सकता। जैसे हम चैतन्य चरितामृत में भी देखते हैं, शिवानंद सेन बोल के एक महाप्रभु के बहुत निकट भक्त थे, और जब वो एक बड़े पार्टी के साथ जगन्नाथपुरी जा रहे थे, कुत्ता आ गया उनके साथ, तो फिर शिवानंद सेन ने कुत्ते का बहुत ख्याल रखा एक्चुअली, क्योंकि उसने शरण लिया था उनका। और जब किसी अवस्था में किसी ने कुत्ते को खाना नहीं दिया, कुछ कुत्ता चला गया, तो शिवानंद सेन को बहुत बुरा लगा कि मैंने वो कुत्ते को नहीं संभाला, क्योंकि वो मुझे शरण लिया था उसने मेरा, तब भी मैंने उसको संभाला नहीं। फिर जब वो महाप्रभु के यहाँ आते हो, देखते हो कुत्ता यहाँ पर नाच रहा है, महाप्रभु जो नारियल का जो है वो खा रहे थे और उसको दे रहे थे, और वो कुत्ता खा रहा था और हरि बोल नाच रहा था। वो देख के शिवानंद सेन साष्टांग दंडवत किया कुत्ते को, उनको लगा कि नहीं मैंने अपराध किया इसको, मैंने अच्छी तरह से, ये जो शरणागत कुत्ता था मेरे प्रति, हमारे पार्टी के प्रति, मैं लीडर था ना वो पार्टी का, आई वाज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोटेक्ट, रक्षा करना मेरा जिम्मेदारी उत्तरदायित्व था, तो उनको बुरा लगा था उस समय। तो बेसिकली ये विज्ञान है एक्चुअली। हम देखते हैं इवन सभी गुरु हैं, जैसे शिला प्रभुपाद जी, जब भी कोई व्यक्ति था जो प्रभुपाद जी के पास आए, शरणागत हुए, जो भक्त थे, और कुछ कठिन परिस्थिति के कारण उनको छोड़ना पड़ा, तो प्रभुपाद जी हमेशा सोचते थे इसकी रक्षा मैं कैसे करूं। तो एक बहुत सुंदर प्रसंग है, एक सन्यासी थे उस समय, तो उन्होंने उनको कुछ परेशानियां थी, तो उन्होंने उनका संन्यास दंडा जो है बाय एयर पोस्ट भेज दिया प्रभुपाद को। तो प्रभुपाद ने कहा नहीं, इसको बहुत बुरा लग रहा है एक्चुअली, संन्यास मेंटेन नहीं कर पाए इसलिए उसने ऐसा किया। और बीच में क्या हुआ, एक भक्त थे मंदिर में, तो उनको पता था कि ये जो एक सन्यासी थे वो किसी स्त्री के साथ कुछ फंस गए, कुछ प्रॉब्लम हो गया उनका, तो उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया सब भक्तों को। तो प्रभुपाद जी बहुत गुस्सा हो गए उस लीडर के प्रति। प्रभुपाद ने कहा देखो, तुमने उसका वापस आना एकदम कठिन कर दिया, अभी तुमने सब दरवाजा बंद कर दिया उसको इस प्रकार से अनाउंसमेंट करके, क्योंकि प्रभुपाद यही चिंता कर रहे थे, ये इसी के बारे में ध्यान कर रहे थे कि ये जो मेरा शरणागत भक्त है इसकी रक्षा में कैसे करो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी लीडर है इनको याद रखने के लिए। तो यहां पर त्रिशंकु शरणागति, ये त्रिशंकु किसको शरण हुए, ये बालकांड में कथा है, ये विश्वामित्र को शरण हुए। तो किस प्रकार से हुए हम जरा देखेंगे यहां पर। तो कथा बहुत लंबी है, लेकिन ये जो त्रिशंकु थे राजा थे जिनका इच्छा था कि उसी देह में स्वर्ग जाए, तो वशिष्ठ के पास गए। वशिष्ठ ने बोला ऐसा सब नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है, जाओ तुम। फिर वो त्रिशंकु ने क्या किया, वशिष्ठ के पुत्रों के पास गया और उनको पूछा कि आप कृपया करके मुझे इसी शरीर में स्वर्ग भेज दो। उनके पितरों ने कहा अरे हमारे पिता ने ऑलरेडी इनकार किया, तब भी तुम हमारे पास आए, श्राप दे दे तुमको, चंडाल हो जाओगे। तो तुरंत चंडाल हो गए उनका सब, मतलब वेशभूषा सब कुछ बदल गया, पूरा चेतना भी बदल गया, वैसे हो गया चंडाल जैसा। वो तो सोच रहे थे अरे तो क्षत्रिय था मैं, स्वर्ग जाने का मेरा इच्छा था, चंडाल हो गया अभी, तो बहुत दुखी थे। उस अवस्था में वो विश्वामित्र के पास आए, बहुत सुंदर है। विश्वामित्र के पास ये जो श्लोक है ना, शरणम व प्रपद्ये अहम शरण्यान शरणागतः, ये श्लोक त्रिशंकु कह रहे हैं एक्चुअली। जब वो ऋषि के पास आ रहे हैं, वो सुनाते हैं उनकी कथा, वो कहते हैं कि देखो मेरे साथ क्या हो गया है, मेरे को स्वर्ग जाने का इच्छा था, फिर वशिष्ठ के पास गया, फिर उनके पुत्रों के पास गया, और ऐसा हो गया मेरा हालत, ना घर का ना घाट का, मतलब जो मेरा पोजिशन था। और क्या हुआ कि जब चंडाल हो गया तो उनके जो वो राजा के पदवी से भी निकाल दिया गया उनको, जो प्रजा ने कहा कि आप राजा नहीं हो सकते अभी, आपका वेशभूषा आपका चेतना सब चंडाल जैसा है, अभी आप कैसे बैठ सकते हैं यहाँ पर, हटो चलो गेट आउट। तो बोले कि मेरा सब कुछ चला गया अभी। तो उस अवस्था में वो शरण गए विश्वामित्र के पति, तो आपको विश्वामित्र ने उस समय क्या किया, उनका जो भी तपोबल था, इतने युगों का तपोबल जो उनके पास था, वो सब इस्तेमाल करके उन्होंने त्रिशंकु को स्वर्ग भेज दिया। उन्होंने कहा कि मैं तुम शरणागत हुए ना, स्वर्ग भेजता हूं तुमको अभी, देखो। तो सभी ऋषि मुनि आगे देखने के लिए क्या कर रहे हैं विश्वामित्र, स्वर्ग भेज दिया। तो उनको इतना तपस्या था, एक्चुअली हम जब कहानी सुनते हैं हमको लगता है कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, क्या हमको तपस्या का बल ही नहीं, इसलिए कुछ होता नहीं, हम जो कहते हैं वो कुछ होता नहीं है जनरली। लेकिन ये जो रामायण में ऐसे जो कैरेक्टर्स है ऋषि मुनि, उनका तपस्या का बहुत बल था। तो तपो बल के कारण वो ऊपर जाने लगा, टॉइंग करके ऊपर जाने लगा, एकदम सेल्फ रॉकेट में एक खुद के। तो ऊपर गया तो इंद्रदेव भी चकित हो गया, अरे ऐसा कैसा चंडाल धरती से एकदम आ गया यहाँ पर, बोला तुम नहीं आ सकते यहाँ पर, गेट आउट, नीचे भेज दिया उसको। तो एकदम सर नीचे पैर ऊपर ऐसे गिरने लगा, तो जोर से वहां भी शरणागति लिया उसने विश्वामित्र का, विश्वामित्र मुझे बचाइए करके चिल्लाने लगा। तो विश्वामित्र ने रुको कहा, बस रुक गया वहां पर स्पेस में। तो हम भी हमेशा अगर कोई लटका हुआ व्यक्ति है उसको त्रिशंकु कहते हैं। और विश्वामित्र ने क्या किया, उसके तपोबल से एक अलग स्वर्ग बनाया, पूरा स्वर्ग विद रंभा उर्वशी सब कुछ, मतलब एक पैरेलल स्वर्ग बना दिया त्रिशंकु के लिए, पूरा तपस्या उन्होंने एग्जॉस्ट किया इसमें जो भी है। लेकिन विश्वामित्र ने, उनका इरादा अलग था इसमें, ये बेसिकली विश्वामित्र खुद ये कहानी सुनाते राम लक्ष्मण को, जब सुबह मारीच को मारने के लिए लेके जाते उस समय सुनाते हो, उनका इंटेंशन था कि प्रूव करना कि मैं वशिष्ठ से, वशिष्ठ जो नहीं कर पाए मैं कर सकता हूं। वो अलग बात है, वो अहंकार का एक प्रतीत है, वो उतना अच्छा नहीं है। लेकिन बात यह है यहाँ पर कि त्रिशंकु शरणागत हुए और उसका फल उनको मिला है? जो भी यथाशक्ति विश्वामित्र ने अभय प्रदान दिया, उसको जो उसका जो मनोकामना है पूरा कर दिया, उसके लिए स्वर्ग बना दिया। और ब्रह्मा जी भी बीच में आया और कहे कि कोई बात नहीं, अभी विश्वामित्र ने ऐसा कर दिया है तो हम इसको हम नकारेंगे नहीं, जो ये एक सेपरेट प्लैनेट जो बन गया स्वर्ग लोक, ये रहने दो त्रिशंकु के लिए। तो ये दूसरा कहानी है रामायण में शरणागति के बारे में, और यह है त्रिशंकु की शरणागति। थोड़ा आगे जाएंगे जल्दी, हमारे पास शायद 12:30 तक टाइम है। तो तीसरा है सूनशेप शरणागति, ये भी विश्वामित्र के पास है, इसके बाद सब राम शरणागति वापस शुरू हो जाएगा। तो सूनशेप, ये सूनशेप कौन थे, बेसिकली विश्वामित्र मुनि के भांजे थे, मतलब विश्वामित्र के जो बहन थी उनका लड़का। तो कहानी है कि एक अम्बरीश बोल के एक राजा थे, वो हमारे अम्बरीश महाराज नहीं है भागवत के, दूसरे कोई अम्बरीश राजा थे। उनको कोई यज्ञ के लिए कोई तो कारण था, वो बहुत बड़ी कहानी है उसमें। तो उनको एक मनुष्य का ये अर्पण करना था, इसमें बलि, तो ढूंढ रहे थे। तो आए थे विश्वामित्र के बहन के आश्रम में, उनके जो माता बहन और जीजाजी विश्वामित्र के, उनके पास है, उनके तीन पुत्र थे। तो उन्होंने क्या कहा, जो पिता थे उन्होंने कहा कि जो बड़ा पुत्र है वो मेरा सब संस्कार करेगा, अंत्य संस्कार, इसलिए वो मेरा बहुत प्रिय है, उसको मैं नहीं दूंगा। और माँ ने कहा, विश्वामित्र के बहन ने कहा, जो छोटा है तो तीसरा, वो भी मुझे बहुत प्रिय है क्योंकि छोटा है, वो भी मैं नहीं छोड़ूंगा। तो बीच वाले को समझ गया मुझे ही जाना पड़ेगा, तो खुद ही निकल गया ये ऋषि के साथ, इसके ये राजा के साथ निकलते निकलते वो, लेकिन उसको लगा, दुख लगा कि क्या मतलब मेरे ही ऐसा बलि हो रहा है, यू नो मैं बीच वाला हूं इसलिए ऐसा हुआ। तो बीच में क्या हुआ, जब अम्बरीश उस लड़के को लेके आ रहे थे यज्ञ की तरफ, थोड़ी देर के लिए वो विश्वामित्र मुनि को मिला ये लड़का, उनके आश्रम में गया। अम्बरीश से महाराज अम्बरीश को बोला मुझे मेरे मामा से मिलना है, और गया और वो मामा के पास आके रोने लगा, बहुत रोने लगा। और ये श्लोक है वहां पर, ये बालकांड में ही है ये, एक्चुअली ये सब कहानी जो है ना विश्वामित्र मुनि राम लक्ष्मण को सुना रहे हैं, जब ताटका वध उस समय जो गंगा के तट पर बैठ के अलग अलग कहानियां सुनाते हैं विश्वामित्र, उस समय कहानी सुनाते हैं। तो सूनशेप आके विश्वामित्र को कहता है, न मे अस्ति माता न पिता ज्ञातो बांधवाकृतः त्रातुम अर्हसि माम सौम्य धर्मेण मुनि पुंगव। वो कहता है कि मेरा अभी कोई नहीं इस दुनिया में, न माता है न पिता है न बंधु है, कोई नहीं, और बहुत ही त्रस्त हूं, इस अवस्था में मैं आपके पास आया हूं, हे मुने मेरी रक्षा कीजिए। तो विश्वामित्र ने उसका रक्षा किया। तो विश्वामित्र राम लक्ष्मण को कहते हैं कि मैंने क्या किया, उस समय जो भी तपस्या के कारण एक मंत्र मेरे मुंह से निकल गया, और ये जो मंत्र मैंने इस लड़के को सुनाया और उससे कहा कि जब यज्ञ में तुम्हारा बलि देने का समय आएगा तुम इस मंत्र को कहो, बस तुम्हारी रक्षा हो जाएगी। अभय प्रदान देते हो उसको। और वो मंत्र जो है काफी बहुत ही मशहूर मंत्र है वैदिक सभ्यता में, तो उसका उल्लेख आता है रामायण में। तो इस प्रकार से शून्य शेप को विश्वामित्र ने शरणागत हुए और उन्होंने उनका रक्षण किया। तो हम आगे जाएंगे। अगला जो शरणागति है वो ये है अयोध्या कांड में लक्ष्मण की शरणागति। अब ये थोड़ा डिटेल में बताना पड़ेगा क्योंकि इसके पीछे काफी एक बड़ा एक अलग स्टोरी है क्यों लक्ष्मण शरण होते हैं भगवान रामचंद्र के। तो श्लोक है अयोध्या कांड में 31वें अध्याय श्लोक क्रमांक 2। न भ्रातुश्चरणोगाढं निपीढ्य रघुनन्दनः सीतामुवाच तिष्याम राघवं च महाव्रतम्। न भ्रातुश्चरणो, लक्ष्मण भगवान रामचंद्र के पैर पड़ गए डायरेक्ट। तो क्यों पड़े, क्यों शरणागत हुए? तो इसके पीछे एक दूसरा स्टोरी, हम पहले वो कहेंगे फिर यहां पर आएंगे। तो जब राम को वनवास सुनाया, जब दशरथ जब कैकेयी ने बुला के भगवान रामचंद्र को कहा कि तुमको 14 साल का वनवास है, तो भगवान रामचंद्र ने पहला कौशल्या से आज्ञा लिया और उसके बाद सीता के पास गए कहने के लिए कि मैं वन जाने वाला हूं। तो एक्चुअली 4 अध्याय है वाल्मीकि रामायण में। ये जो श्लोक है ना, ये लक्ष्मण की शरणागति 31वें अध्याय में आ रहा है। 27, 27, 28, 29, 30 4 अध्याय अयोध्या कांड में जहां पर सीता और राम का चर्चा होता है। किस बात के ऊपर? सीता कहते हैं राम को कि मैं भी चल रही हूं आपके साथ 14 साल वन। तो राम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, तुम मत जाओ, तुम यहीं पर रहो, माता पिता सास ससुर का सेवा करो। उस समय से जब भी कोई पति ने अपनी पत्नी को उनके एब्सेंस में सास ससुर का सेवा करने को आज्ञा दिया तो कुछ तो तकलीफ प्रॉब्लम हो गया तब। एनीवे, तो सीता ने साफ इनका सीता ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं आपके साथ ही आने वाली हूं। लेकिन उनके उन दोनों के बीच में डायलॉग था, आप समझ गए ना, राम और सीता के बीच में वार्तालाप हुआ। सीता ने बहुत प्रकार के आर्ग्यूमेंट्स किए क्यों मुझे आपके साथ जाना चाहिए। राम मानने के लिए तैयार ही नहीं थे, राम सब बता रहे थे कि वन में कितनी समस्या है, तुमसे नहीं होगा। फिर उसके बाद सीता जब जनरली स्त्री को पहला बोलती है फिर क्रोध आता है उसको, क्रोध में उसने बहुत कुछ बताया। उसने बताया कि पता नहीं मेरे पिता ने किसके साथ मेरा विवाह करके रखा है, एकदम कायर हो तुम, इस प्रकार से बोलने लगे। बहुत गुस्सा हो गया सीता को, रोने लगी, सब प्रकार के अस्त्र यूज किए सीता ने राम के साथ, लेकिन उनके पैर वेर नहीं पड़े तो वो तो नहीं हुआ। लेकिन वो बहुत आर्ग्यूमेंट किया, रोया, चिल्लाया, बहुत कुछ किया, अंत में सक्सेसफुल हो गई वो। 4 अध्याय है वर्णन रामायण में इन दोनों के बीच में जो वार्तालाप हुआ। अंत में राम को समझ में आ गया, नहीं ये छोड़ेगी नहीं मुझे, इसको लेके जाना है, ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, आ जाओ बोले, तो खुश हो गई वो तुरंत। तो ये सब लक्ष्मण देख रहे थे, अभी लक्ष्मण को भी जाना है वन राम के पास। अगर वो भी ऐसे आर्ग्यू करने लगेंगे और 4 अध्याय वाल्मीकि जी को लिखना पड़ेगा रामायण में, बराबर है ना, ग्रंथ बड़ा हो जाएगा और ऑलरेडी 24,000 श्लोक है। तो लक्ष्मण ने, अगर आप श्लोक क्रमांक देखोगे तो आपको समझ में आएगा, दूसरा श्लोक है बस वो चैप्टर में। सीता के साथ 4 अध्याय का डिस्कशन है, फिर उसके बाद जब राम ने कहा सीता को हाँ ठीक है तुम आ सकती हो मेरे साथ, लक्ष्मण ने दूसरे ही श्लोक में वो जो अध्याय में सीधे पैर ही पड़ गए भगवान के। भगवान का नहीं नहीं आप प्लीज ऐसे मत करो, यदि गंतुम कृत्वा बुद्धिर वनमृग गजायुतम अहम त्वा नुगमिष्यामि वनमध्रे धनुर्धरः, मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा, धनुष के साथ रहूंगा, आपकी रक्षा करूंगा, प्लीज मुझे लेके जाइए, चरण पड़ गए। और अगर आप अध्याय देखोगे 4th या 5वें श्लोक में भगवान ने बोल दिया आ जाओ मेरे साथ, कुछ ज्यादा कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं, कुछ नहीं, बहुत ही सरल हुआ वहां पर। और ये श्लोक की सुंदरता ये है कि यहां पर वाल्मीकि जी कहते हैं कि लक्ष्मण राम सीता दोनों के पैर पड़े थे शरण। तो ये आइडियल शरणागति है, आप भगवान रामचंद्र सीता माता दोनों के शरण हो जाओ तो तुरंत आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएगा, कोई देरी नहीं है प्रोसेस में, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, कुछ नहीं। तो इस प्रकार से लक्ष्मण शरणागत हुए और उसका फल उनको मिल गया। तो एनीवे, हम ये सीता के बारे में कह रहे थे तो एक और छोटी कहानी है उसमें। जैसे हम देखते मैं कह रहा था ना थोड़ी देर पहले कि सीता ने राम से कहा कि तुम कायर हो, पता नहीं क्यों मेरे पिता ने मेरा तुम्हारे साथ विवाह किया, इस प्रकार से सीता ने कहा। तो एक्चुअली बहुत अध्यायों के बाद एक प्रसंग आता है वन पर्व में, मतलब अरण्य कांड में, जहां पर राम अकेले 14,000 राक्षसों का वध करते हैं। मुकुंदन प्रभु ने कल बहुत अच्छा सुंदर प्रवचन दिया उसके ऊपर, कर दूषण और 14,000 राक्षसों का वध संहार भगवान श्री रामचंद्र ने अकेले किया। और उस समय वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं कि सीता जो थी एक गुफा में थी एक्चुअली, तुरंत भाग के आ गए सब, जब उनको पता चला कि ऐसा हुआ भाग के आ गए और उन्होंने भगवान रामचंद्र को आलिंगन किया। तो ये बहुत सुंदर प्रसंग है क्योंकि जनरली वैदिक सभ्यता में और इसमें पति पत्नी जो है पब्लिक में ऐसे आलिंगन करना ये नहीं करते। तो काफी व्याख्याताओं ने लिखा है कि सीता ने आलिंगन क्यों किया भगवान का पब्लिक में इस प्रकार से। तो कहते हैं कि सीता के मन में था कि मैंने बहुत साल पहले कहा था राम को कि आप कायर हो, तो आज उन्होंने स्थापित कर दिया कि वो कायर नहीं है, वो बहुत शूरवीर है। तो उसको लगा कि नहीं, आई वॉज प्रूव्ड रॉन्ग एंड आई एम हैप्पी अबाउट इट। तो इसके लिए उन्होंने भगवान को आलिंगन किया। तो इस प्रकार से ये भी एक प्रसंग है इसके रिलेटेड, ये है लक्ष्मण शरणागति। अगला कुछ शरणागति वो है भरत की शरणागति, ये भी अयोध्या कांड में ही है, भरत शरणागति। तो हम सब जानते हैं इस कथा को। तो राम वनवास के लिए जाते हैं 14 साल के लिए, और जब चित्रकूट में है तो भरत अपनी पूरी सेना और राज्य मंत्री ऋषि मुनि सबके साथ आते हैं वन में याचना करने के लिए कि भगवान रामचंद्र आ जाए है, आप ही राजा हो जाइए। तो एक्चुअली अगर आप देखोगे भरत राम मिलाप कितना बड़ा वर्णन है वाल्मीकि रामायण में, सैकड़ों अध्याय है एक्चुअली भरत राम, सैकड़ों अध्याय इधर चैप्टर आफ्टर चैप्टर क्या क्या होता है वहां पर। वो एक जबाली मुनि है, वो नास्तिक की तरह पेश होते हैं वहां पर, वशिष्ठ याचना करते हैं, सब लोग कहते हैं भरत अलग अलग प्रकार से याचना करते हैं, भगवान राम कहते हैं कि नहीं। तो उस समय इनफैक्ट भगवान रामचंद्र एक दूसरा एक कहानी सुनाते भरत को। भगवान रामचंद्र कहते हैं कि देखो भरत, ये सिर्फ मैं वन इसके लिए नहीं आया क्योंकि वो कैकेयी का वर जो था दो वर, वो एक दूसरा पॉइंट है। एक्चुअली जब हमारे पिता ने कैकेयी से विवाह किया था उस समय कैकेयी जो पिता थे, कैकेयी के पिता अश्वपति, उनको दशरथ महाराज ने वचन दिया था कि तुम्हारी जो बेटी है उससे जो पुत्र निकलेगा वो राजा बनेगा। क्योंकि उस समय दशरथ महाराज के पुत्र ही नहीं हुए थे, उनके काफी सारे पत्नियां थी लेकिन पुत्र हुए ही नहीं। तो उनको लगा चलो भाई अगर कैकेयी से पुत्र हुआ तो वही राजा बनेगा, क्योंकि कैकेयी आखिरी पत्नी थी एक्चुअली भगवान दशरथ महाराज की। तो दशरथ महाराज ने वाक्य दे दिया अश्वपति को। तो फिर एक्चुअली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो कथा है ना वो सिर्फ यहां पर आता है रामायण में। तो कोई कहेगा कि ये कथा कैकेयी को भी मालूम नहीं था क्या? तो बताया जाता है कि नहीं, वो अश्वपति ने अपनी बेटी को भी नहीं कहा ये कहानी। तो किसको मालूम था ये कथा? कहा जाता है कि सिर्फ सुमंत्र को मालूम था ये कथा, और उसने भी किसी को नहीं बताया, वो मंत्री है ना ऐसे किसी को नहीं बोलता कुछ भी। तो रामचंद्र भगवान को कब पता चला? क्योंकि अगर रामचंद्र भगवान को पहले से मालूम है तो जब पहले दशरथ ने अनाउंसमेंट किया कि राम को राजा बनाऊंगा तब राम राजी क्यों हो गए? क्योंकि राम राजी नहीं होना चाहिए था अगर उनको पहले मालूम था कि मेरे पिता ने इस प्रकार से वचन दिया है। तो कहा जाता है कि राम को भी मालूम नहीं था उस टाइम, तो राम को कब पता चला? तो जब राम वनवास के लिए जा रहे थे तो सुमंत्र उनके साथ है गुहा के आश्रम तक, तो उस समय शायद, क्योंकि टीकाकार लिखते हैं क्योंकि रामायण में यही आता है कि इस समय पर रामचंद्र कहते हैं, तो उसी समय सुमंत्र ने राम को बताया होगा कि ऐसा भी एक स्टोरी है बैकग्राउंड में। तो राम ने कहा कि नहीं, वो भी हमारे पिता ने वाक्य दिया है तो हमको उसका पालन करना पड़ेगा। तो भरत एक्चुअली हार गए एंड में, वो कहेंगे ये मान नहीं वाले। इनफैक्ट वो पूरा कहानी में ना उस समय तक राम इसके लिए भी राजी नहीं कि मैं बाद में आके राजा बनूंगा, नहीं मैं राजा बनने ही नहीं वाला हूं, बस तुम ही राजा बनोगे। फिर भरत क्या कहते हैं, वो शरणागत होते हैं। तो ये वन ऑफ द लास्ट चैप्टर्स है राम भरत मिलाप में। तो भरत कहते हैं यहां पर, इत्युक्त्वा न्यपतत भ्रातुर पादयोर भरतः तदा भृशंसं प्राप्तयाम आस राममेवं प्रियं वदः। पैर बढ़ गए भगवान के, उन्होंने कहा कि हे प्रभु ऐसा मत कीजिए, मुझे ऐसा दंड मत दीजिए, इस प्रकार से रोने लगे। तो उसी समय भगवान राम ने थोड़ा सा लीनियंसी दिखाया, तो भगवान राम इसके लिए मान गए कि मेरे जो पादुका वो सिंहासन पर रहेगा और 14 साल बाद मैं आऊंगा वापस राजा बनने के लिए। ये जो वचन है भगवान राम ने उसी समय दिया भरत को ये शरणागति के बाद। तब तक सिर्फ अलग अलग डिबेट चल रहा था उनके बीच में क्यों राजा नहीं बनेंगे वो, लेकिन जब भरत शरणागत हो गए तो भगवान ने भी पादुका दिया और ये भी कहा कि 14 साल में आ जाऊंगा। तो भरत भी कहता है कि देखो 14 साल के बाद आप नहीं आए, मैं अग्नि प्रवेश करूंगा। और हम देखते हैं कि 14 साल के बाद जब भगवान रामचंद्र लंका से निकल पड़े तो उन्होंने पुष्प विमान, उनको उनको मालूम था कि रावण के पास ये है, तो उन्होंने विभीषण से पूछा कि मुझे वो मिलेगा क्योंकि हमको जल्दी जाना है क्योंकि भरत रुका हुआ है हमारे लिए। तो विभीषण ने दे दिया और उसमें भगवान राम बहुत ही शीघ्रता से आ गए क्योंकि भरत की शरणागति थी और उसको अभय प्रदान देना था, उसकी इच्छाओं को पूर्ण करना था भगवान श्री रामचंद्र को। तो यह भरत शरणागति, यह अयोध्या कांड। अगला जो शरणागति है वो हम देखेंगे अरण्य कांड में। तो अरण्य कांड जब भगवान राम सीता लक्ष्मण सब जब वन में गए थे 14 साल के लिए, उस समय यह शरणागति की कहानी आती है। तो ये कहानी है वो जो कौवे की, इंद्र के पुत्र जयंत। ये जो कौवा था ये सीता माता के स्तन पर आक्रमण करके खून चूसने लगा था एक समय पर, जब सीता राम के गोदी में लेटी थी उस समय उस कौवे ने आक्रमण किया। तो भगवान राम जब उठे और उन्होंने देखा कि इस प्रकार से रक्त बह रहा है कि सीता के शरीर से, तो बहुत क्रोधित हुए। तो उन्होंने घास का तिनका लिया, उसमें पूरा ब्रह्मास्त्र का शक्ति डाल के उन्होंने उस कौवे के पीछे डाल दिया। वो कौवा भागने लगा, तीनों लोग भागा हो, सबके अपने पिता इंद्र के पास गए। इंद्र ने कहा मेरे पास मत आओ, इधर बहुत प्रॉब्लम है, आप चले जाओ, किधर जाना जाओ, ऑलरेडी मैं बहुत केस में फंसा हूं, एक और केस नहीं चाहिए मेरे को। तो इंद्र ने अपने बेटे को कहा कि मेरे से नहीं होगा। तो इस प्रकार सभी देवी देवता सब ने उनको इनकार कर दिया। फिर फाइनली वो कौवा वापस आके राम सीता के शरण में आ गया। तो ये श्लोक है बहुत सुंदर, ये श्लोक एक्चुअली फ्लैशबैक में आता है किष्किंधा कांड में, सुंदर कांड में, लेकिन ये कहानी है अरण्य कांड की। सतम निपतितम भूमौ शरण्य शरणागतम वदार्हम अपि काकुत्स्थ कृपया पर्यपालयः। सतम निपतितौ भूमौ, जब धरती पे गिर गए ओ कौवा शरण्य शरणागतम, शरण लेने के लिए भगवान रामचंद्र का, वदार्हम उसका वध करना चाहिए था, कृपया पर्यपालयः, लेकिन भगवान ने कृपा दिया, ठीक है, छोटा एक दंड दिया, उसका एक आंख छीन लिया क्योंकि ब्रह्मास्त्र छोड़ा था तो कुछ तो करना था ब्रह्मास्त्र को, लेकिन बहुत ही एक टोकन पनिशमेंट देख के उसको भी अभय प्रदान दे दिया भगवान श्री रामचंद्र ने। तो ये कथा है अरण्य कांड की। तो अरण्य कांड में एक और शरणागति है, वो है ऋषि शरणागति। ये सातवां उदाहरण है शरणागति का। तो ये बहुत बड़ी कहानी है। तो एक्चुअली जब भगवान रामचंद्र जब दंडकारण्य जंगल में प्रवेश करते हैं, उस समय बहुत से जो ऋषि मुनि थे वहां पर, वो सब आ गए भगवान के पास और वो याचना करने लगे। एक्चुअली दो याचना यहां पर, पहला याचना वो करने लगे कि ये जो राक्षस असुर यहां पर है बहुत हमको तकलीफ दे रहे हैं, बहुत तकलीफ दे रहे हैं, हम जब यज्ञ कर रहे हैं यज्ञ के बीच में वो मल विष्ठा सब डाल देते यज्ञ कुंड में। और ऐसे बहुत सारे ऋषि है आप देखोगे यहां पर कि जो यज्ञ कर रहे हैं और उस समय पर उन्होंने उनका शिरच्छेद कर दिया, तो सिर्फ उनके हाथ है यज्ञ की तरफ लेकिन सर नहीं है, ऐसा भी है यहां पर जंगल में अगर आप घूमोगे तो। तो उन्होंने बहुत प्रार्थना किया कि हम त्रस्त हो गए, कोई चारा नहीं दिखाई दे रहा है हमको। तो भगवान राम उनको आश्वासन देते हैं कि भगवान राम कहते हैं कि मुझे बुरा लग रहा है कि आपको आके ऐसा कहना पड़ा कि तुम कुछ करो, मुझे खुद ये करना चाहिए था, मैं क्षत्रिय कुल से आया हुआ हूं, मुझे खुद ये करना चाहिए था। तो भगवान राम एकदम तैयारी थे वहां पर। तो भगवान राम ने अपने सब अस्त्र शस्त्र लिए और सब रेडी होने लगे वेपन्स के साथ। तो उस समय सीता माता जो थी वो कहते हैं भगवान रामचंद्र को कि आपने, मुझे लगता है कि आप थोड़े क्रूर हो गए, मुझे लगता है कि आपको पहला ये जो असुर लोग है इनसे थोड़ा वार्तालाप तो करना चाहिए, थोड़ा डिस्कशन, कैसा मत करो ऐसे, जो ऋषि मुनि है इनको तकलीफ मत दो, डोंट डू लाइक दिस, ऐसा पहला थोड़ा उनको उपदेश दे दो आप, अगर वो नहीं माने तो ठीक है। आप डायरेक्टली आपने ऋषि मुनि को कह दिया कि मैं राक्षसों का वध करूंगा, क्योंकि भगवान कहते हैं एक्चुअली उस समय जब ये सब ऋषि शरणागति करते हैं भगवान रामचंद्र के प्रति, रामचंद्र अभय प्रदान करते हैं और कहते हैं कि मैं सभी अभी असुरों का नाश संहार करने वाला हूं। तो सीता कहते हैं कि आपने एक चांस ही नहीं दिया, वो जो असुर लोग है उनको सुधारने के लिए, क्योंकि सीता का चेतना वही है, हमेशा सीता देखती है कि सुधर सकता है क्या व्यक्ति, चांस हम दे सकते हैं क्या, दूसरा अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं क्या उनको। सो कहने लगे, मुझे लगता है, तो सीता कहने लगी रामचंद्र को, मुझे लगता है ना आप बहुत ही अस्त्र शस्त्र लेके आ गए यहां पर वन में, इसके कारण आपका मन में ऐसे ही विचार आ रहे हैं डायरेक्टली, यू नो फाइटिंग, आप सोच ही नहीं रहे हो कि थोड़ा सा पहले हम चर्चा करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते क्या। तो एक बहुत बड़ी कहानी कहने लगे सीताराम को, वो कहने लगे कि ऋषि थे और बहुत तपस्या करते थे, और तपस्या करते थे तो इंद्र को टेंशन आ गई, इंद्र को हमेशा टेंशन ही है कि कोई तपस्या कर रहा है तो उसको टेंशन है, उसको लगता है कि वो उसके पदवी के लिए तपस्या कर रहा है। तो फिर उन्होंने बृहस्पति से पूछा क्या करूं, ये बंदा बहुत तपस्या कर रहा है। तो बृहस्पति ने कहा देखो एक काम करो, एक चाकू दे दो उसको। तो इंद्र ने कहा ठीक है, इंद्र ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और एक अच्छा है स्विस चाकू बोलते ना हम, स्विस स्विट्जरलैंड का चाकू, एकदम फर्स्ट क्लास चाकू माना जाता है, बहुत शार्प है, थोड़ा सा छुआ तो भी एकदम कट। तो इंद्र एक ब्राह्मण का रूप धारण करके वो गए इनके पास, ऋषि के पास, उन्होंने चाकू प्रदान किया, उन्होंने बताया कि आप ये चाकू स्वीकार कीजिए, थोड़ा आपके सेवा में आ जाएगा ये। तो उसने चाकू लिया, ठीक है कहा। फिर थोड़ी देर बाद उसको लगा कि ये कैसे चलता है देखना चाहिए, तो ये एक पेड़ था बैनियन ट्री, देखा ये कटता है क्या, वो तुरंत बैनियन ट्री गिर गया, ठक गया पेड़ कट गया। बोला यार क्या चाकू है ये, टेरिफिक। तो कहा जाता है कि उस समय चित्रगुप्त ने एक फाइल खोल दिया इसके नाम पे, वो ऋषि पुण्यात्मा थे, अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं किया, पहली बार उन्होंने बैनियन ट्री को काट डाला, तो उन्होंने नोट किया पहला बैनियन ट्री कटिंग। तो पेड़ काटना पाप माना जाता है एक्चुअली, जैसे हम देखते हैं प्रभुपाद जी जब जुहू मंदिर की स्थापना किया तब काफी सारे पेड़ थे, तो कॉरपोरेशन जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने इस्कॉन जुहू के जो प्रेसिडेंट थे गिरिराज महाराज उस समय, उनसे कहा कि ये पेड़ तुमको काटने पड़ेंगे अगर तुम बिल्डिंग बना रहे हो। तो एक पेड़ उन्होंने काट भी दिया, एक दो पेड़। तो प्रभुपाद जी को पता चला, बहुत गुस्से हुए, प्रभुपाद जी ने बोला गिरिराज महाराज को, तुम जाके म्यूनिसिपल कमिश्नर को कहो कि पेड़ काटना हमारे धर्म में पाप है, हम पेड़ नहीं काट सकते। तो उन्होंने भी सोचा, तो उन्होंने पूरा कंस्ट्रक्शन ही चेंज कर दिया पेड़ों के कारण। तो मतलब साधारण व्यक्ति ऐसा सोचता नहीं है कि ये पेड़ के लिए मैं पूरा मंदिर का कंस्ट्रक्शन का एंगल ही क्यों चेंज करूं, लेकिन प्रभुपाद जी का था कि पेड़ को नहीं काटना चाहिए। एनीवे, तो ये जो ऋषि थे हाथ में चाकू आ गया, एक एक करके एक बिल्ली को काटा, फिर शेर को काटा, फिर एकदम डकैत हो गए, एकदम सबको मार ही रहे थे, सब तपस्या छोड़ दिया, इंद्र संतुष्ट हो गए। हमको चिंता या कुछ टेंशन करने का जरूरत नहीं है कि हम लोग तपस्या कर रहे हैं, इंद्र हमको भी ये चाकू प्रदान करेंगे। आजकल हमारे पास सबके पास जियो फ्री इंटरनेट है, वो सबसे बड़ा चाकू है हमारे पास। तो उसके कारण शायद ऐसा लीला अभी कलयुग में संभव नहीं है। तेरी वे तो सीता ये कहानी कहते हैं रामचंद्र को, कहते हैं कि वो चाकू आने के कारण इसका मन बदल गया ऋषि का। उसी प्रकार आपके हाथ में अस्त्र शस्त्र होने के कारण आपने तुरंत ऋषि मुनियों को कह दिया कि मैं असुरों का संहार करूंगा। आपने ये भी नहीं सोचा कि थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे ये असुरों के साथ, उनको सुधारेंगे, ऐसा आपने सोचा नहीं। एक्चुअली बहुत सुंदर स्टोरी, अगर हम देखेंगे तो राम का जो मूड है, सीता का मूड, दोनों सामने आ जाता है। क्योंकि सीता माता का मूड ये है कि हमेशा चांस दो, सबको चांस दो, एक और मौका दो उनको, भगवान राम ऐसा नहीं है। तो ये होता है यहां पर। तो उस समय भगवान रामचंद्र एक श्लोक कहते हैं, तो वो श्लोक यहां पर हमने लिखा है, ये बेसिकली अरण्यकांड से, अप्यहम जीवितम जह्यम त्वाम वासीते स लक्ष्मणम न तो प्रतिज्ञाम संश्रुत्य ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः। राम कहते हैं कि मैं अपना जीव त्याग कर सकता हूं, मैं तुमको या लक्ष्मण को भी त्याग कर सकता हूं, लेकिन ब्राह्मणों को मैंने जो वचन दिया है वो कभी त्याग नहीं करूंगा। ये ऋषि मुनि जो मेरे पास आए और उन्होंने उनका दुख सुनाया, वो सुन के मुझे समझ में आ गया कि ये जो असुर है बहुत ही क्रूर है, ये कभी सुधरेंगे नहीं, इनको एक ही है दंड, साम दाम भेद इनसे नहीं चलने वाला, डायरेक्ट दंड देना पड़ेगा इनको, और ये मैंने निश्चय किया है, ये मेरा दृढ़ व्रत है। इस प्रकार से भगवान राम सीता को कहते हैं। तो ये बेसिकली ये कहानी है वो ऋषि शरणागति की। और एक और कहानी है इसमें, ये एक्चुअली थोड़ा बाद में आता है, लेकिन ये भी अरण्यकांड की कथा है। जो ऋषि मुनि जब भगवान रामचंद्र को देखते हैं, उनकी सुंदरता को देखते हैं, वो सब सोचते हैं कि हम भी आपको भारिया के रूप में सेवा करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। क्योंकि वो ऋषि मुनियों को, क्योंकि कैसा है कि सभी जो रिलेशनशिप है उसमें जो भारिया है वो सर्वोत्तम निकट होती है व्यक्ति के, और वो सबसे ज्यादा सेवा कर सकती है। जैसे हम कभी कोई पूछता है कि भगवान के सबसे बड़े भक्त गोपियों के रूप में क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है कि भगवान के सबसे बड़े भक्त गाय है, मतलब फॉर एग्जाम्पल, ऐसा क्यों है? सो बेसिकली द आंसर इज इन द फॉर्म ऑफ द वुमन, यू नो, जो स्त्री के रूप में सबसे ज्यादा सेवा वो कर सकती है एक्चुअली, तो इसलिए वो रूप उन्होंने स्वीकार किया है। तो जो से ऋषि मुनि भी कहते हैं भगवान रामचंद्र को, हम भी भार्या के रूप में आपका सेवा करना चाहते हैं। तो रामचंद्र वापस अपना दृढ़ व्रत सुनाते हैं। उनका दृढ़ व्रत क्या है? एक पत्नी व्रत, एक पत्नी व्रत। और एक पत्नी व्रत का पालन इतना किया भगवान रामचंद्र ने, कहा रामायण देखोगे भगवान रामचंद्र इस जगत में 11,000 साल थे, और एक्चुअली सीता माता फिजिकली भगवान रामचंद्र के साथ सिर्फ 16 साल थी, एक्चुअली नहीं 16 नहीं 16 प्लस 12 28, 12 साल वन जाने के पहले, 14 साल वन में, और वन से आने के बाद 2 साल लव कुश का जन्म हो गया, प्रेग्नेंट थी, उनको बेच दिया वन, और उसके बाद वो चली गई, अंतर्धान हो गए। तो सिर्फ एक 20-30 साल एक्चुअली सीता फिजिकली, ऑफकोर्स हमेशा तो भगवान और उनके सीता माता वो कभी अलग नहीं होते, लेकिन एक्सटर्नल परस्पेक्टिव वो सिर्फ एक 20-30 साल साथ में थे। हम देखते हैं दुनिया में जनरली कोई व्यक्ति है, उनकी पत्नी अगर गुजर जाती इवन 50 साल की आयु में, वो जनरली तुरंत शादी कर ही लेता है, हालांकि उसके जीवन के अभी सिर्फ 10-20 साल ही बचे, लेकिन उसको लगता है नहीं मैं अकेले नहीं रह सकता, शादी कर लेता है दूसरा। हम देखते हैं भगवान रामचंद्र इतने वो दृढ़ व्रत थे इस पर, एक पत्नी व्रत, वो उनका आयु 11,000 साल था, हमारे जैसा भी नहीं कि 60-70 साल, 11,000 साल था। और 40 साल के बाद सीता चली गई, तब भी उन्होंने एक पत्नी व्रत का पालन किया। तो शरण हुए ना लेकिन ये लोग, तो शरणागति को आप इनकार नहीं कर सकते। तो भगवान रामचंद्र ने क्या किया, उन ऋषि मुनियों को कहा कि अगली बार जब मैं आऊंगा पृथ्वी पर श्री कृष्ण के रूप में, तब आपका ये जो याचना है स्वीकार करूंगा। तो कहा जाता है कि भगवान कृष्ण के रासलीला में अलग अलग प्रकार की गोपियां थी, एक थी ऋषिचारी, ऋषिचारी मतलब जो पिछले जन्म में सब ऋषियां थी, यहां पर उन्होंने वो शरणागत हुए भगवान रामचंद्र के प्रति अरण्यकंड में, उसका फल उनको मिला। तो कभी कभी लीला के कारण वो जो फल शायद थोड़े देर के बाद मिलेगा, लेकिन शरणागति का फल हमेशा मिलता है, यही सबक हम रामायण में देखते हैं। ये 7वां प्रसंग है शरणागति का अरण्यकांड में। अगला जो प्रसंग है ये किष्किंधा कांड से है, ये है सुग्रीव की शरणागति। तभी इसके पीछे एक बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड ये है कि जब रामचंद्र और सुग्रीव एक दूसरे को मिलते हैं तो हमको तुरंत समझ में नहीं आता कि कौन किसके शरण लिए, क्योंकि दोनों मित्रता दोनों ने स्थापित किया ना। तो राम ने कहा सुग्रीव को मैं तुमको मदद करूंगा, और सुग्रीव ने कहा कि मैं आपको मदद करूंगा, तो दोनों मित्र जैसे थे, तो वहां पर समझ में नहीं आता कि सुग्रीव शरण लिए, लेकिन ये हमको बाद में समझ में आ जाता है। क्यों? क्योंकि पहली बात, युद्ध कांड में भगवान राम कहते हैं सुग्रीव को, जब विभीषण का शरणागति होता है ना, उस समय जब विभीषण शरणागत होने आते हैं, जो भगवान राम विभीषण को स्वीकार करने के लिए तैयार है, तो सुग्रीव राम से कहते हैं कि अगर आपने इसको लिया तो मैं छोड़ के जा रहा हूं, आई एम क्विटिंग, रेजिग्नेशन लेटर है मेरा। तो भगवान राम तो यू नो मेजर मैनेजमेंट इशू, सुग्रीव तो सब वानरों के राजा थे, अगर उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया तो क्या है। भगवान राम ने कहा कि देखो, भगवान राम ने अपनी स्थिति बताई, भगवान राम ने कहा मैं अकेले ही सब राक्षसों, सब पूरे सृष्टि का संहार कर सकता हूं। तब इनको पता चला कि ये है कौन व्यक्ति, हमको एक्चुअली इनका सेवा करने का मौका मिला है, तो ये समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली ये बाद में आता है। तो एनीवे, तो इनिशियली क्या हुआ, भगवान राम और सुग्रीव ने मित्रता स्थापित किया, फिर उसके बाद वाली वध हुआ। एक्चुअली वाली का शरणागति बताया नहीं यहां पर, उसके पीछे भी एक रीजन है, वाली भी एक्चुअली भगवान राम के चरण पड़े थे उसकी मृत्यु के पहले, लेकिन वो कैसा है ना, पूरा दंड प्राप्त होने के बाद किया उन्होंने। तो जनरली शरणागति जब आप अच्छे खासे हो तब शरणागति करना चाहिए, मतलब पूरा एकदम थोड़ा कॉर्नर करके मृत्यु शैया पे उसको समझ में आ गया, तो दंड के बाद था इसलिए हमने वो प्रसंग यहां पर उल्लेख नहीं किया। तो एनीवे वाली वध होने के बाद क्या हुआ, वहां पर चतुर्मास था, बारिश का मौसम था, तो युद्ध शुरू नहीं हो सका। तो फिर सुग्रीव अपने राजमहल में थे और राम और लक्ष्मण वन में ही थे, और सुग्रीव ऐशो आराम में पड़ गया, तो ये सब एकदम मजा कर रहा था, सब पी रहा था, खा पी रहा था और एकदम खुश था, वो भूल गया। तो बारिश का मौसम समाप्त हो गया, और भी कुछ दिन निकल गए, राम ने लक्ष्मण को कहा कि देखो जाओ और सुग्रीव को कहो कि जो रास्ते से मैंने वाली को भेज दिया वो रास्ता अभी खुला है, वो बंद नहीं हुआ है वो रास्ता, द डोर इज ओपन, दैट रोड इज स्टिल ओपन, तो जाके कहो उसको। तो लक्ष्मण तो आप जानते हो एकदम लाल हो गए, वो गए वहां पर सुग्रीव के यहां। तो पहले सुग्रीव ने लेडीज को आगे भेज दिया, तो जरा लेडीज आते हैं तो कोई भी व्यक्ति ना थोड़ा सोबर हो जाता है जनरली, तो तारा और रूमा सब आगे, और लक्ष्मण तो ब्रह्मचर्य का पालन करते, वो थोड़ा इन लोग को देखे थोड़ा नीचे देखे, क्या है सब आगे याचना करें, वो कहे कि देखो हम बंदर है, बंदर से आप क्या अपेक्षा कर सकते हो, ऐसे ही होता है, थोड़ा गलती होता है, माफ कर दो ना ऐसा वैसा कहा। तो लक्ष्मण ने बोला ठीक है उसको जल्दी बुलाओ बाहर। तो सुग्रीव आ गया, फिर सुग्रीव ने भी क्षमा याचना की, और तभी राम के पास आके सुग्रीव शरणागत होते हैं। तो ये बहुत सुंदर प्रसंग है, पूरा अध्याय है इसमें, 38वां अध्याय किष्किंधा कांड के। पादयो पतितं मूर्धना तमुत्पात्य हरीश्वरं प्रेमना च बहुमानात च राघव परिशस्वजे। तो ये श्लोक इस कॉन्टेक्स्ट में वाल्मीकि ने रचा हुआ है, जब सुग्रीव आके पादयो भगवान के चरण कमलों पर अपना मूर्धना अपना सर रख देते हैं और शरणागत हो जाते हैं। एक्चुअली वो कहते हैं कि मैंने बहुत गलतियां किया, ये वो, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हो, मेरी प्लीज रक्षा कीजिए। और भगवान भी सब भूल जाते हैं, इसके पहले भगवान इतने गुस्से थे, उन्होंने कहा था कि वो रास्ता खुला है, ये वो, भगवान वो सब भूल जाते, तुरंत क्षमा कर देते। ये एक्चुअली ये भी एक बहुत सुंदर कैरेक्टरिस्टिक है भगवान का, कभी भी कुछ यू नो कैरी नहीं करते अपने हृदय में, यू नो खुन्नस बोलते हैं हम, पता नहीं उसको और क्या शब्द है उसके लिए, खुन्नस नहीं रखते किसी के प्रति, क्षमा कर देते, चलो इसने क्षमा मांगा, शरणागत हुए, क्षमा कर दो इसको। तो सुग्रीव की शरणागति है यहाँ पर, यह आठवां उदाहरण है शरणागति का। अगला जो उदाहरण है बहुत सुंदर है, ये बेसिकली सीता के प्रति शरणागति है, ये त्रिजटा की शरणागति है, और ये कथा है सुंदर कांड में। ये शरणागति इसलिए इतना स्पेशल है क्योंकि किस प्रकार से ये शरणागति हुए और इसका फल इनको कैसे मिला, और इससे हम सीता माता के प्रति आप शरण हुए तो उसका लाभ क्या है वो भी हम देख सकते हैं। तो बेसिकली ये कहानी है त्रिजटा की। तो त्रिजटा एक राक्षसी जो विभीषण की पुत्री थी, शायद विभीषण की पुत्री थी वहां पर। तो क्या हुआ कि ये जो सब 10 महीने सीता माता अशोक वाटिका में थी, और काफी सारे राक्षसियों को रावण ने वहां पर डेप्यूट किया था सीता को डरा धमकाने के लिए, तो ये जो सब राक्षसियां थी हर दिन सीता को डराती थी, धमकाती थी, बहुत बहुत कहती थी हम तुम्हें काट काट कर ब्रेकफास्ट बनाएंगे, ये बहुत कुछ बोलती रहती थी वो सीता को, और सीता रोती रहती थी बस। तो एक दिन त्रिजटा इनके पास गई, ये सब राक्षसियों के पास, और उसने कहा कि तुमको सीता से, सीता को शरण लेना चाहिए। तो हम जरा स्टोरी कहेंगे पहला। तो त्रिजटा एक दिन आई सब राक्षसियों के पास और वो कहने लगी, देखो मुझे एक बहुत अद्भुत स्वप्न हुआ कल रात को। तो सब राक्षसियों ने क्या 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 था, क्या क्या स्वप्न हुआ आपका? जनरली लेडीज को यू नो कोई भी चीज हो तो ज्यादा ऐसा बात करने का और डिस्कशन करने का आदत है। तो राक्षसियों ने भी पूछा वो त्रिजटा को, थोड़ा डिटेल में वर्णन कीजिए किस प्रकार से आपका स्वप्न आया। तो त्रिजटा कहने लगी, मैंने स्वप्न में देखा कि सीता के अच्छे दिन आने वाले हैं। तो अभी अच्छे दिन मतलब मैं वो पॉलिटिकल सेंस में नहीं बोल रहा हूँ, वो पिछले 5 साल में अच्छे दिन आए नहीं आए वो अलग विषय है, वो चुनावों के साथ जुड़े थे, लेकिन यहाँ पर एक्चुअली वैसे ही कहती है वो, मैंने स्वप्न में देखा कि सीता के अच्छे दिन आने वाले हैं। अभी मैंने स्वप्न में देखा कि राम लक्ष्मण सब बहुत सज धज के एक बड़े से घोड़ों के साथ एक रथ में आए हुए हैं और सीता को वापस ले जा रहे हैं सुंदर कपड़े पहनकर। और मैंने ये भी देखा कि रावण ने मुंडन करके तेल वेल डाल के अपने शरीर में गधों के रथ पर दक्षिण दिशा में यमराज की ओर जा रहा है, और उसके साथ कुंभकर्ण और बाकी सब राक्षस सब जा रहे हैं उसी दक्षिण मार्ग में यमराज के पास। और फिर त्रिजटा कहने लगी, देखो एक बार राम आ गए और सीता को लेके गए तो तुम सब फंस जाओगी अभी, क्योंकि तुम लोग इतना तकलीफ दे रहे हो इसको सीता को, बाद में तुमको बहुत पश्चाताप होगा, तो अभी तुम शरण हो जाओ सीता के प्रति। तो उस कॉन्टेक्स्ट में श्लोक कहते हैं त्रिजटा, प्रणिपात प्रसन्ना ही मैथिली जनकात्मजा अलमेशा परित्रारुम परित्रारुम राक्षस्यो महतो भयात। त्रिजटा कहती है वो सब राक्षसियों को, और सीता का जानकी जो है जनकात्मजा, जानकी का ये स्वभाव है आपको पूरी तरह से शरणागति भी कुछ करने का जरूरत नहीं है। प्रणित प्रणित प्रणिपात प्रसन्न है। प्रणिपात मतलब थोड़ा हाथ जोड़ के अगर आप थोड़े झुक गए सीता के सामने तो भी वो प्रसन्न हो जाएगी। मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं सीता को शरण। राम को शरणागति हमने अभी तक जो भी श्लोक देखे पूरा साष्टांग दंडवत करके राम के चरणों में ऐसे पड़ गए, लेकिन यहां वैसा भी नहीं है। प्रणिपात थोड़ा झुक जाओ बस। और उस अध्याय में ये डिस्कशन आता है कि जो बाकी राक्षसियां हैं वो शरणागति करते नहीं है एक्चुअली सीता को, वो सिर्फ डिस्कस करते हैं, वार्तालाप करते एक दूसरे के साथ, हमको करना चाहिए कि नहीं ऐसा। त्रिजड़ा कह रही है शुड वी सरेंडर और नो, सिर्फ डिस्कशन है और वहीं अंत होता है, सिर्फ त्रिजटा शरण लेती है एक्चुअली। लेकिन बाद में युद्ध कांड के बाद जब हनुमान जी आते हैं सीता को, जब रावण का वध हो गया सीता को वापस लाने के लिए हनुमान जी जब आते हैं तो हनुमान जी वॉलंटियर करते हैं, ये सब राक्षसियों को मार दूंगे मैं। तो सीता कहते हैं कि नहीं 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 ये सब बहुत अच्छे लोग हैं, इनको आप कुछ मत करो, दे आर ऑल वेरी नाइस लेडीज, ऐसा उन्होंने कहा। तो कोई कहेगा कि अरे ऐसा कैसे सीता ने छोड़ दिया इनको। जनरली दुनिया में हम देखते हैं या कोई भी कुछ भी करेगा व्यक्ति को वो देखता रहता है, देखता हूं मैं, मेरे जब अच्छे दिन आएंगे देखता हूं तुमको बाद में, वैसे जनरली व्यक्ति सोचते है। लेकिन सीता ने उन सबको अभय प्रदान दे दिया। तो जो टीकाकार है रामायण के श्री वैष्णव आचार्य, वो कहते हैं कि राम को शरणागति अगर आपको लेना है तो एक्चुअली आपको शरण लेना पड़ेगा जाके, मतलब पैर गिन के याचना करना पड़ेगा। सीता का कैरेक्टरिस्टिक है अगर आपने सिर्फ डिस्कशन किया कि सीता को शरण होना या नहीं होना, मतलब आपने इसके ऊपर जरा चर्चा किया और कुछ कंक्लूशन पर भी नहीं आए, बट यू आर ओनली डिस्कसिंग दिस पॉइंट शुड वी सरेंडर और नो टू मदर सीता, तो सीता सोचती है कि नहीं, वो लोग सोच रहे थे वो तो वो स्वीकार कर लेती है उनका ऑफरिंग, वो सोचते हैं कि नहीं ये लोग ऑलरेडी शरण हो गए मुझे, अभय प्रदान दे देते उन सबको। तो ये है त्रिजटा की शरणागति। अभी हम आते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शरणागति, ये सेंटर पीस है रामायण का। अभी तो हमने काफी सारे शरणागति की कहानियां देखी, लेकिन अभी ये विभीषण की शरणागति। तो इसके बारे में हमने स्टार्टिंग में कहा था अनुकूल से संकल्प, ये जो पूरा श्लोक है जो सिक्स जो छह प्रकार के शरण लेने के जो स्तर, ये सब हम देखते हैं विभीषण में। एक्चुअली हमको शरणागति के बारे में थोड़ा और अगर जानकारी चाहिए ना तो भक्ति विनोद ठाकुर के काफी गीत है, उसमें बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने शरणागत भक्त का हृदय व्यक्त किया है। अगर हम वही गीत गाएंगे भगवान के प्रति तो भी भगवान बहुत संतुष्ट हो जाएंगे। एक्चुअली आज रामनवमी है, एक बहुत सुंदर गीत है, तो मैं सोच रहा हूं जरा एक गाई लेते। सर्वस्व तो मार चरण संपिया पोड़ी छी तो मार घरे, तुमी तो ठाकुर तोमार कुकुर बोलिया जान हो मोरे, बांधिया निकटे अमरे पाली बे रोहिबो तोमार द्वारे, प्रतिपजने रे आसीते नाधिबो राखिबो गडेर पारे, तवनिज जन प्रसाद सेविया उच्चिष्ट राखी बेजा, आमार भोजन परमानंदे प्रतिदिन हबे ताहा, आमार
बोसिया सुइया तोमार चरण चिंती बोसत त आमी नाचते नाचते निकटे जाइबो जाको नो ढाकिबे तुमी नाचते नाचते निकटे जाइबो निजेर पोषण कबुना भावीबो बोलीबो भावेर बोरे रोहीबो भक्ति विनोद तुम्हारे पालक बोलिया वरण करे सर्वस्व तोमार चरणे संपिया पोड़ी छी तोमार घरे
तो बहुत ही सुंदर भजन है भक्तिनोद ठाकुर का जहां पर ये शरणागत जो भाव है उनके हृदय से निकल रहे हैं। तो एक्चुअली आचार्यों के इतने सुंदर गीत है हमको हमारा खुद का प्रार्थना बनाने का जरूरत नहीं है। अगर हम सिर्फ यही प्रार्थना दोहराएंगे और उस चेतना को हमारे हृदय में रखने का प्रयास करेंगे तो उसका हमको फल मिल जाएगा। और इसका इसका अर्थ भी इतना सरल है बंगाली भाषा में कि ऑलमोस्ट हिंदी जैसे ही है। आई एम श्योर सबको समझ में आ ही गया इसका जो हाँ। तो वापस हम यहाँ पर जा रहे हैं विभीषण शरणागति। तो 5 मिनट में हम विराम दे देंगे, ये ऑलमोस्ट लास्ट पार्ट है। तो विभीषण शरणागति जो है सेंटर पीस माना जाता है पूरे रामायण में, क्योंकि यहां पर आप सब शरणागत होने का सब भाव, शरणागत होने के अलग अलग अंग सब आपको देखने को मिलता है यहां पर। तो हमने ऑलरेडी इसके बारे में चर्चा किया था पहले कि किस प्रकार विभीषण शरणागत हुए। तो और इसमें एक और बहुत सुंदर इसमें तात्पर्य है विभीषण शरणागति में, जब विभीषण शरणागत होने के लिए आए और सुग्रीव एक्चुअली पहले मिले विभीषण को, तो विभीषण ने सुग्रीव से कहा कि आप राम को जाकर कहिए कि वो सब लोग को शरण देने वाला है, इस विभीषण को भी स्वीकार करें। इस प्रकार से विभीषण ने याचना की। और सुग्रीव राम के पास आ गए और सुग्रीव ने डायरेक्टली अपना जो पॉइंट है वो बताना शुरू हो गए। और उसका कंक्लूशन था सुग्रीव का कि विभीषण को मार देना चाहिए, लेट अस किल विभीषण एंड ऑल हिज एसोसिएट्स, मार दो उसको डायरेक्ट। तो भगवान राम ने सुना, बस हंस रहे थे, मतलब स्माइलिंग, वाज स्माइलिंग एंड वाज हियरिंग। फिर भगवान रामचंद्र ने कहा कि बाकी सब बंदरों से कहा कि आप लोग भी अपना अपना अभिप्राय सुनाओ। तो सब बंदर सुनाने लगे, अंगद सुनाया, जाम भगवान सुनाया, महिंद ने सुनाया, सब ने सुनाया, और कोई भी सहमत नहीं था कि हम अनकंडीशनली विभीषण का शरणागति स्वीकार करें, कोई भी सहमत नहीं था। सब यही कह रहे थे कि हम उसको ले सकते हैं लेकिन उसके पीछे 4-5 जासूस रखेंगे, वो देखते बैठेंगे क्या कर रहा है विभीषण, ये वो बहुत कुछ बोला उन्होंने। फिर वापस सुग्रीव कहने लगा, सुग्रीव कहने लगा कि क्या भाई है विभीषण, अपना भाई को छोड़ के आया यहां पर, शी ऐसे आदमी को कैसे हम लेंगे हमारे टीम में। तो ऐसा सब चल रहा था। फिर भगवान रामचंद्र ने फाइनली अपना मत प्रस्तुत किया और बहुत सुंदर है, ऑलमोस्ट देर आर एक्चुअली सिर्फ इसके ऊपर विभीषण शरणागति के ऊपर हम कोई व्यक्ति मतलब 2-3 घंटा ऐसे ही बात कर सकते हैं, इतना उसमें डिटेल है। लेकिन भगवान रामचंद्र कहते हैं सुग्रीव को कि देखो सुग्रीव, हर भाई भरत जैसे नहीं है, हर पुत्र मेरे जैसे नहीं है, और हर एक मित्र तेरा जैसा नहीं होता। इतना सुंदर श्लोक है वो, क्योंकि भगवान राम को कहना था सुग्रीव को, देखो तुम उसमें दोष ढूंढ रहे हो लेकिन तुम अच्छे भाई थे क्या कभी? ऐसा पूछा तो उसको तुरंत बुरा लगेगा कि क्या आपने एकदम पर्सनल अटैक किया आपने ऐसा। तो भगवान राम ने बहुत सेंसिटिवली हैंडल किया, उन्होंने भाई का प्रशंसा करने के लिए किसका प्रशंसा किया? भरत का। सब भाई भरत जैसे नहीं। और ये श्लोक के पहले एक श्लोक है जहां पर भगवान राम लक्ष्मण को देख के एक हंस रहे, ही स्माइल्स एट लक्ष्मण एंड देन ही सेज, क्यों लक्ष्मण को भी बुरा नहीं लगना चाहिए ना कि मेरे मुझे मैं इधर खड़ा हूं इधर 14 साल यू नो सब नींद छोड़ के बीवी को छोड़ के खड़ा हो और वो जो भाई है वहां पर बुरा राज मतलब बैठे उसको याद कर रहे। तो एनीवे तो भगवान राम स्माइल्ड एट लक्ष्मण टू इंडिकेट तुम तो भाई की गिनती में भी नहीं आते, तुम उससे ऊपर हो एक्चुअली, तुम एकदम मेरे सम हो। तो उनकी तरफ एक आश्वासन दिया फिर भगवान राम ने कहा, फिर भगवान राम ने ये जो श्लोक है ये कहा था, सक्रदेव प्रपन्नाय तवा अस्मि इति याचते। एक बार, ये एक बार भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि भगवान जो है ना उनके अपेक्षा ज्यादा नहीं हमसे। जैसे हम हरिनाम में भी कहते हैं कि अगर किसी ने एक बार भगवान का नाम बिना अपराध के लिया नामाभास के स्तर पर तो उसको नरक से मुक्ति प्राप्त होती है और वो जो लिबरेशन मुक्ति भी प्राप्त कर लेता है। और एक बार अगर किसी ने शुद्ध नाम लिया तो उसको वैकुंठ मतलब आध्यात्मिक जगत गोलोक वृंदावन प्राप्त हो जाता है एक बार। तो उसी प्रकार से भगवान राम कहता है सक्रदेव एक बार अगर किसी ने कहा, पूरे दिल से कहना चाहिए, लेकिन पूरा हृदय से कहना चाहिए कि मैं आपका हूं, ऐसा अगर एक बार भी किया तो मैं उसको अभय प्रदान देता हूं और ये मेरा व्रत है। इस प्रकार से उन्होंने विभीषण की शरणागति स्वीकार की। हम एक्चुअली डिटेल में नहीं जा रहे, मैंने रामायण लेके आया था, मैं सोचा भाई लेकिन समय ऑब्वियसली काफी कम है और 2-3 मिनट में हम समाप्त करना है। तो इसके बाद अगला शरणागति, अभी सिर्फ 2 शरणागति बचे, 11वां और 12वां। तो 11वां शरणागति राम ने शरणागति लिया। तो किसकी शरणागति लिया राम ने? समुद्र देवता की। तो ये कहानी आती है युद्धकांड में। तो युद्धकांड में जब उनको समुद्र पार करना होता है तो राम वापस सब मंत्रियों के साथ चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार इस समुद्र को हम लांग कर लंका में प्रवेश करेंगे। तो विभीषण कहते हैं एक्चुअली राम को कि आपको समुद्र देवता को आपको शरण होना चाहिए। तो ये श्लोक है, एवं उक्त्वस्तु धर्मज्ञ प्रत्युवाच विभीषण समुद्रम राघवो राजा शरणम गंतुम अर्हसि। आप शरण हो जाओ समुद्र देवता को और समुद्र देवता ही आपको एक रास्ता बताएंगे कि आप कैसे इस समुद्र को पार कर सकोगे। और फिर ये इसके बाद भगवान रामचंद्र ने 3 दिन उपवास किया, व्रत किया समुद्र देवता को शरण के भाव में। लेकिन ये कहानी एक्चुअली कैसी कहानी है? ये कहानी हमको बताती है कि किस व्यक्ति को शरण नहीं करना चाहिए। तो मतलब सबको शरण के लायक भी नहीं ना सब लोग। तो क्या होता है ये कहानी में, राम मनुष्य के रूप में बैठे हुए यहां पर और शरण ले रहे, तपस्या कर रहे, लेकिन समुद्र देवता उसका कोई इंटेंशन ही नहीं है शरणागति पूरा करने के लिए उसकी तरफ से। तो भगवान राम अपने ओरिजिनल जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उस रोल में चले जाते, वो सोचते हैं कि ऐसे व्यक्ति को शरण करके कुछ फायदा नहीं, इसको डरा धमकाना पड़ेगा। तो एकदम वो गुस्से के कारण वो जो समुंदर है एकदम उबलने लगता है, सब प्राणी जो मछली वछली है अंदर सब जलने लगते हैं। तुरंत समुद्र देवता बाहर आ जाते, वो शरण लेते, ये वो शरण भी नहीं एक्चुअली, वो सरेंडर है अंग्रेजी सरेंडर है वो, मतलब वो पुलिस चोर के पीछे गया वैसा एकदम सरेंडर कर देते। वो कहते हैं भगवान राम को सॉरी सॉरी क्षमा आपको करना है, मैं आपको बता देता हूँ रास्ता। तो ये स्टोरी से ये कहानी से हमको पता चलता है कि जब हम किसी को शरणागत होते हैं वो शरणागति स्वीकार करने के वो लायक होने चाहिए, वो मतलब उनका सिचुएशन होना चाहिए। और ये लास्ट शरणागति है ये उत्तरकांड में। तो उत्तरकांड में ये कहानी आती है जब रावण के जो मेटरनल ग्रैंडफादर है, रावण के मेटरनल ग्रैंडफादर थे माल्यवान। तो 3 लोग थे, माल्यवान माली सुमाली, ये जो 3 थे रावण के मेटरनल ग्रैंडफादर उनके भाई थे और वो बहुत देवी देवताओं को तकलीफ देते थे। तो उस समय क्या होता है कि देवी देवता विष्णु के पास जाते और विष्णु इनको मारने के लिए आते। तो विष्णु तो क्या होता है कि ये जो माल्यवान सुमाली और माली ये भागने लगते हैं और विष्णु पीछे से आक्रमण करते हैं इनका। तो माल्यवान रुक के कहता है कि नारायण जानिशे क्षत्र धर्मम पुरातनम, हे भगवान नारायण आपको क्षत्र धर्म मालूम नहीं है क्या? आप पीछे से मार रहे हो हमको, ऐसा नहीं करना चाहिए क्षत्रिय धर्म में। तो भगवान कहते हैं आंसर में 7.8.7, युष्मितो भय भीतानाम देवानाम भय मया भयम। मैंने देवता लोगों का शरण स्वीकार किया है और मैंने उनको आश्वासन दिया कि मैं तुम लोग को मारूंगा। अब एक छात्र धर्म गया बाढ़ में, मैं अभी मेरे जो ओरिजिनल धर्म है मेरे शरणागत भक्त उनकी रक्षा करना वो मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है छात्र धर्म से, तो मैं पीछे से तुमको मारने वाला हूं। तो इस प्रकार से भगवान राम ने वो माल्य वालों और सुबाली उसमें से एक मर गया और बाकी दोनों रसातल भाग गए। एनीवे वो बहुत बड़ी कहानी है, हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन इसमें भी हम देखते हैं कि जो देवता है इन्होंने शरण लिया था भगवान नारायण को और इसके कारण भगवान नारायण ने अपना क्षात्र धर्म का त्याग कर दिया और क्योंकि भगवान को क्षत्रिय धर्म से ज्यादा ये धर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कभी कभी दो धर्म में कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो एक ही धर्म का व्यक्ति पालन करता है ना, तो उसी प्रकार से भगवान ने इस पर्टिकुलर का पालन किया। तो हम ऑफकोर्स ये सब कुछ कहने गए, तो बेसिकली आज हम इस कक्षा को यहाँ पर विराम देंगे, समय हो गया, आरती का समय भी है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि ये जो पूरा आज हमने ये सत्र रामायण के ऊपर ये चर्चा किया, ये जो वाल्मीकि मुनि ने रामायण के पूर्व में जो 16 गुण बताए भगवान श्री रामचंद्र के, उसमें छठा गुण है दृढ़ व्रत। उस दृढ़ व्रत के बारे में हमने आज विश्लेषण किया, और दृढ़ व्रत क्या गुण है, ये गुण है कि भगवान ने ये दृढ़ व्रत लेके बैठे कि कोई भी व्यक्ति मेरे शरण में आएगा उसको मैं अभय प्रदान करूंगा। और आज से बड़ा अवसर नहीं है, क्योंकि जिस दिन कोई किसी का आविर्भाव है उस दिन वो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा कृपालु रहते हैं, और कृपालु रहते हैं। और हमने 12 शरणागतियों के बारे में पढ़ा, तो हम भी 13वें शरणागत हो सकते हैं, उसमें हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं भक्तिविनोद ठाकुर के गीत की तरह, मतलब उन्होंने जैसे उस भाव में, और याचना कर सकते हैं। हरे कृष्ण, श्री प्रभुपाद की जय, राम नवमी महामहोत्सव की जय।